ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे श्रीचैतन्यमनोभीष्टम् स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदा वन्देहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरो न वैष्णववांश श्रीरूपं सग्रजातम् सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासाद श्री गौर भक्तवृंद हरे राधे मेरी स्वामिनी मेरा राधे को दान जन्मा जन्मा मोह दीजियो। श्री वृंदावन राधा तू बड़ भागिनी, कौन तप जय राधा माधव कुंज बिहारी,
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 जय राधा माधव कुंज यशोदानंदन ब्रज जन रंजन,
यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन,
यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरवन चारी,
यमुना तीरवन चारी,
यमुना तीरवन चारी,
यमुना तीरवन चारी,
जय राधा माधव जय राधा माधव कुंज बिहारी
जय राधा माधव कुंज बिहारी
गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी
गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी
यशोदा
नंदन
ब्रज जन रंजन
यशोदा
जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा
जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा
जय जगन्नाथ जगन्नाथ
प्राण शरीर दी सदा
प्रशांत कामो रहिता सुरो सुर
प्रशांत कामो रहिता सुरो सुर
यस्मिन् महद्गुणा राजन्
यस्मिन् महद्गुणा राजन्
गृह्णन्ते कविभिर्मुहुः
गृह्यन्ते
न ते धूनापि दीयन्ते
न ते धूनापि दीयन्ते
यथा भगवतीश्वरे
यथा भगवतीश्वरे
यं साधुगाथा सदसी
यं साधुगाथा सदसी
रीपवोऽपि सुरा नृप
रूपि सुरानिप
प्रतिमानं प्रकुर्वन्ति
प्रतिमानं प्रकुर्वन्ति
किमु तान्ये भवादृशा
किमु तान्ये भवादृशा
गुणेरमलं संख्ये महात्म्यं तस्य सूच्यते
महात्म्यं तस्य सूच्यते
वासुदेवे भगवती
वासुदेवे भगवती
यस्य नैसर्गिकीरति
यस्य नैसर्गिकीरति
न्यस्तक्रीडन को बालो
न्यस्तक्रीडन को बालो
जडवत्तन्मनस्तया
जडवत्तन्मनस्तया
कृष्ण ग्रह गृहीतात्मा
कृष्ण ग्रह गृहीतात्मा
न वेद जगदीदृशम्
वेद जगदीदृशम्
आसीन पर्यटन नश्नन्
आसीन पर्यटन नश्नन्
शयान प्रतिबन् ब्रुवन्
शयान प्रतिबन् ब्रुवन्
नानुसन्धत्तयेतानि
नानुसन्धत्तयेतानि
गोविन्द परिरम्भित निन्दन्तं पुलकोत्कलेन विकस अन्नी प्रप्रसुञ्छवे प्रो गायन्तं निजपार्षदे परिवृतम् Yes.
तो आज की कथा प्रारंभ करने से पहले परम पूज्य गुड़ाकेश प्रभु के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि यहां मंच पर आए और हम सबको संबोधित करें।
हरे कृष्णा। तो सबसे पहले इस कथा के जो आयोजक है उनको मैं बारंबार धन्यवाद देता हूँ इस हरे कृष्ण मोमेंट की ओर से। और इस कथा के गायक वस्तुतः श्री सुखदेव गोस्वामी पाद के द्वारा ये कथा गाई गई है, लेकिन इसके बाद में ये भागवती कथा का प्रचार जो विश्व भर में जिनके द्वारा हुआ है, ऐसे हमारे संस्थापक आचार्य श्री श्रीमद ऋषि भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज को हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं कि जिनके कारण आज हम लोग उस श्रीमद् भागवतम को सुनने के या उनके पाठ के अधिकारी हुए हैं, क्योंकि जिनमें देवता लोग का भी अधिकार नहीं है। यह श्रीमद् भागवतम की कथा है, यह एक तथ्य है और उसको पद्म पुराण में बताया गया है कि जब सुखदेव गोस्वामी पाद महाराज परीक्षित को कथा सुनाने जा रहे थे, उसके बस पूर्व की घटना है, बस उसी टाइम की घटना है कि स्वर्गलोक से देवता लोग कुछ अमृत का पात्र लेकर के आए और सुवर्ण कलश में वो देवताई जो अमृत था वो अमृत को ला करके उन्होंने कलश सुखदेव गोस्वामी पाद के आगे उन हाथों से लंबा करके कहा कि महाराज इस अमृत आप रखिए। सुखदेव गोस्वामी पाद बोले ठीक, इसको यहां क्यों लाए हैं? बोलते हमने सुना है कि श्री परीक्षित महाराज का सातवें दिन तक्षक के द्वारा उनके काटने से उनका मृत्यु होगा, तो हम लोग चाहते हैं कि परीक्षित महाराज न मरे, वो इस अमर को पी लेंगे, अमर हो जाएंगे, और बदले में आप हमें बस ये कथा में बैठने दीजिए। तो सुखदेव गोस्वामी पाद ने कहा जन्मेजय को बुला करके, बोले इधर आओ इधर आओ। जन्मेजय उस टाइम शासक थे, महाराज परीक्षित पुत्र, उन्होंने कहा कि ये देवता लोग को जरा एक कथा की बाउंड्री उससे बाहर भगाओ, उसके बाहर कर दो। बोले क्यों? वो तो बेचारे कथा सुनना चाहते। बोले नहीं, वो कथा सुनना चाहते लेकिन कथा के महात्म्य को गिरा करके कथा सुनना चाहते, उसका क्या अर्थ है? वो जानते नहीं उनका महत्व क्या है, और केवल ये छोटी सी भौतिक चीज जो अमृत है, जो 36,000 साल तक व्यक्ति के जीवन को लंबा कर सकती है, केवल 36,000 साल, तो वो अमृत लेकर के उनके साथ उन कथा का वो विनिमय चाहते हैं कि जो कथा जीव को अपना अमरत्व प्रदान करने वाली है या उनका शाश्वत जीवन प्रदान करने वाली है, उनका विनिमय करना चाहते हैं, अतः वो अनधिकारी है। तो देवता लोग भी जिन कथा से वंचित है, ऐसे कथा में हम लोग को जो अधिकार दे दिया है, ऐसे श्रील प्रभुपाद महाराज का हम कोटि कोटि बार धन्यवाद, उनको प्रणाम करते हैं, क्योंकि ऐसी भागवती कथा जो देवता लोग के लिए भी दुर्लभ है, वो दुर्लभ कथा हमें वो इस प्रकार योग्यता प्रदान करके हमारे लिए उन्होंने सुलभ कर दिया है। तो धन्य है आप लोग, इस मलाड की प्रजा या यहाँ के जो लोग यहाँ कथा सुनने के लिए एकत्रित हुए हैं, समझ लो कि ये एक ऐसी घटना है, आप माने या न माने, इस अनंत कोटि ब्रह्मांड में अनंत अनंत जीव जीते हैं, उनमें से बहुत कम लोगों के पास मनुष्य जीवन है, और उसमें भी भगवान के भक्तों का सन्नि तत्रापि दुर्लभम मन्य वैकुंठ प्रिय दर्शनम। ग्यारह स्कंद में कहते हैं कि दुर्लभ मानुष देहो देही नाम, उन देहदारी जीव के लिए एक तो मनुष्य जीवन दुर्लभ है, लेकिन तत्रापि दुर्लभम मन्य वैकुंठ प्रिय दर्शनम। वैकुंठ प्रिय कहते हैं भगवान के भक्त को, श्रील प्रभुपाद महाराज जैसे शुद्ध भक्त का सानिध्य जब व्यक्ति को मिलता है तो वो धन्याति धन्य हो जाते हैं, क्योंकि मनुष्य जीवन हम बहुत लोगों के पास देखते हैं लेकिन उन सबके पास ऐसे साधु की संगति नहीं देखते हैं। वो धन्य हम लोग हैं या धन्य आप लोग हैं कि आप लोग को एक महान भक्त का संगति या उनके संस्पर्श से जो विश्व भर में ये श्रीमती भागवत कथा का जो प्रचार प्रसार हुआ है, ऐसे धन्याति धन्य साधु की संगति हम लोग को जो दुर्लभ होते हुए भी सुलभ हुई है, ये कोई कम धन्यवाद के पात्र नहीं, या ये कोई कम भाग्य का भाग्य से मिलेगा नहीं। ऐसा सत्संग कहते हैं कि सत जन्म अर्जिते न सतसंगम च लभते पुरुष यदा वही, कहते जब पुरुष इस संसार में ऐसा सत्संग तब प्राप्त करता है जब करोड़ों करोड़ों जन्म के सत जन्म और जीते न करोड़ों करोड़ों सौ सौ, जब दो बार सौ सौ बोला जाता है तो उनको करोड़ों के अर्थ में लिया जाता है संस्कृत शब्द में, तो कहते करोड़ों जन्म का करोड़ों पुण्य कार्य का उदय जब एक साथ में होता है तब ये श्रीमद् भागवतम की कथा ऐसे भक्तों के सानिध्य में मिलती है तब मिलती है। और इससे होता क्या, तब बोलते हैं अज्ञान हेतु कृत मुहम्मद अंधकार नाशकम, तो अज्ञान के कारण जो उदित होने वाला काम क्रोध मद लोभ मोह और मत्सर जो हमारे सर रिपु सर दुश्मन है, वो दुश्मन लोग का नाश करता है ये सत्संग। और साथ में तद ओडियड विवेक, और विवेक का उदय करता है, और वो विवेक क्या है, वो विवेक है हम ये देह नहीं है हम आत्मा है, यही विवेक है। हम ये नश्वर शरीर के लिए रात दिन मेहनत करते हैं लेकिन आत्मा के लिए एक दिन का भी किसी के पास फुर्सत नहीं होता है, 30 दिन में एक महीने में एक बार भी। और धन्य है श्रील प्रभुपाद महाराज के जिनकी संगति एक बालक ने प्राप्त कर लिया, हमारे सामने ये बालक है, एक बालक ने उनकी संगति प्राप्त कर लिया और आज हजारों लोग उनके जरिए श्रीमद् भागवतम सुन रहे हैं। तो दूसरे धन्यवाद के पात्र इस सभा में ये व्यासासन स्थित श्री लाल गोविंद प्रभु है कि जिनकी मुख से हम लोग इसी प्रकार जैसे प्रभुपाद जी सिखाए हैं उसी प्रकार आप देखेंगे सामान्य कथा और हरेकृष्ण मूवमेंट की कथा में कितना अंतर है, आप लोग जज कीजिए इस बात को सुन करके। ये कोई कथा जैसा नहीं है, वो लोग गुजराती में वार्ता रे वार्ता बाबा डोर चारता एवं नहीं, आज ये कथा छे ये कथा है वो ऐसी कथा नहीं है। इस कथा का तथ्य या ये जो भगवत कथा है वो भगवत कथा बहुत सुंदर तरीके से विवेचना उनकी की गई है, यद्यपि वो सुंदर तरीके से और बहुत बढ़िया काव्य में भी नहीं है लेकिन भगवान के गुणों का वर्णन जिस काव्य में और जिस वाणी में होता है तो कहते वो वाणी धन्य होती है। क्यों, क्योंकि ऐसी वाणी के द्वारा ऐसा भागवतम में लिखा गया है बहुत सुंदर तरीके से श्री वेदव्यास महाराज को उनके गुरु उपदेश करते हुए कहते हैं कि न यद वचस चित्र पदम हरेर यशो जगत पवित्रम प्रगणित कहिर चित लोक तद वायसम तीर्थ मुष्यंति मानसा न यत्र हमसा निर्मंत उप शिक्षया। कहते कि बहुत रस भाव गुण इत्यादि अलंकारों के से युक्त जो वाणी होती है लेकिन जिसमें जगत को पवित्र करने वाले भगवान का गुणानुवाद जो वाणी के द्वारा नहीं गाया जाता है उनको जो साधु लोग हैं जो मनस्वी जो बुद्धिमान लोग हैं कहते हैं तद वायसम तीर्थ मुष्यंति, उनको वो कव्वे के तीर्थ के तुल्य समझ, कव्वे का तीर्थ जानते आप लोग कौवा कहां इकट्ठा होते हैं, जो कूड़ा जहां जिस गड्ढे में फेंका जाता है वहां पर कौवे लोग एकत्रित होते हैं, तो कहते हैं ऐसे कौवे लोग के तीर्थ के तुल्य उन बुद्धिमान जो उपशिक्षया है अर्थात जिनका हृदय हमेशा उन भगवान के चरणों में रमन करता है ऐसे उच्च कक्षा के जो साधु लोग हैं इनको वायस तीर्थ मानते हैं। और उनके विरुद्ध बिल्कुल कहते हैं आगे के श्लोक में कि तद भाग विसर्गो जनता अगभिप्लवो जस्मिन प्रतिश्लोकम अवबद्ध अपि नामानि अनंतस यशो अंकितानि यत श्रवन्ति गायन्ति गणन्ति साधव। उनके विरुद्ध कहते हैं वही भगवान की गुणावली अगर वो विचित्र पदावली में नहीं रची गई है, अवबद्ध अपि का ये अर्थ है कि उनको उन रस भाव इन सारी गुणावली से भले युक्त नहीं है, भले ही एक बच्चा पढ़ता है ये भागवत को एक बालक भले ही पढ़ता है लेकिन वो पढ़ रहा है भगवान के गुणों को अब भले ही उनकी वाणी उसी प्रकार जैसे सुखदेव गोस्वामी पाद जैसे महान ऋषि मुनि जो जिस भाव और जिस रस में जिस लय में वो गाए थे उस लय में भले ही ये लाल गोविंद प्रभु गान नहीं करते हैं लेकिन वो गान करते हैं किसका, हरि कथा का गान। और वो हरि कथा कहते कैसी है, बोलते जनता अग विप्लव, ये समस्त जनता के अग नामक पाप, अग का अर्थ है पाप, उन पापों का नाश करने वाली होने से कहते हैं कि उन भगवान के नामों से अंकित वो जो कथा होती है वो जनता के सारे पाप का नाश करने वाली होती है। और याद रहे कि हम लोग जो दुख मिलता है हम सब लोग को, वो कड़ा मेहनत या कड़ा कोई उपाय करके हम नहीं बच सकते। हमारे पाप जिस दिन समाप्त हो जाएंगे उस दिन हम सुखी हो जाएंगे। तो कहते हैं वो भगवान की कथा, वो भागवती कथा जो इनको श्रवण करता है, जो इनको गाता है, सुनवंती गायंती गुणंती अभिक्षणस्य, कहते कुंती महारानी कि उनको जो निरंतर गाते हैं सुनते हैं तो उनका पापों का उनके हृदय से वो भगवान की नामावली, भगवान की गुणावली या भगवान का जस उनके हृदय में जाकर के उनके पाप का उन मूल रूप से नाश कर देते हैं। तो वो जो पाप नाश होने से व्यक्ति सुखी होता है संसार में। ये जितना भी हमें जो दुख आता है वो हमारे पाप के कारण आता है, हमें भले मालूम हो ना हो। हम सोच रहे हैं कि हम मेहनत से इन सारी दुखों से बच जाएंगे, ना, कितनी भी मेहनत करे एक व्यक्ति केवल बैठ करके कथा सुनता है और एक व्यक्ति पूरा जीवन मेहनत करता है, उनकी 7 दिन की कथा वेदों में बताया गया है कि वो सर्वश्रेष्ठ उपाय के रूप में उन्होंने सब कुछ कर लिया और एक व्यक्ति ने करोड़ों जन्म मेहनत करता रहे लेकिन उन मेहनत से उनको कुछ नहीं, वो दुख से दुख दारिद्र कभी निवारण नहीं कर सकता है, लेकिन 7 दिन वाली ये कथा उन सारे दुख दारिद्र से जीव को निवृत्त करके भगवत धाम ले जाने वाली है। आप लोग धन्य है लाल गोविंद जी, और धन्य आप लोग हैं कि आप लोग कई दिनों से, पिछले 2-3-4 दिन से आप लोग जो इन कथा को, भागवती कथा को सुन रहे हैं, तो मुझे भी भगवान ने एक मौका दे दिया है और मैं भी उनकी कथा श्रवण करने के लिए आज एक दिन आया हूं। क्योंकि इसी प्रकार सूरत में भी एक बालक के द्वारा कथा चल रही है, वही हमारे यहीं के कांग्रेगेशन के बच्चे हैं और ये भी कांग्रेगेशन का लड़का है, इस मीरावर मंदिर का कांग्रेगेशन का लड़का। तो इन लोग को प्रेरित करने के लिए तो मुझे वहां कल जाना पड़ेगा। तो बहुत बहुत धन्य आप लोग हैं इस प्रकार ऐसी भागवत की कथा को, जो भले ही एक बच्चे के द्वारा गाई जा रही है लेकिन उनको आप, वो भगवान की कथा है, आप उनको सबसे महा अमूल्य धन लेकर के ऐसा समझ करके जब ग्रहण करेंगे तो सुनिश्चित है कि जितने भी यहाँ उपस्थित है प्रत्येक लोग का पाप और प्रत्येक दोष धुलने में ये 7 दिन भी नहीं लगेगा, 1 दिन में धुल जाएगा। हरे कृष्णा। और सुख बिल्कुल हठीले में आंवले की तरह सुख आपके हाथ में होगा। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की, श्री लाल गोविंद प्रभु की, निदाय गौर हरि ब्रह्मानंद
गुड़ाकेश प्रभु की। इस ग्रेस गुड़ाकेश प्रभु हमारे शिक्षा गुरु हैं। श्री श्री राधा कृष्ण हरि मंदिर के जितने भी कांग्रीगेशन भक्त हैं ये सब के शिक्षा गुरु हैं। उनकी प्रेरणा से, उनके आशीर्वाद से, उनकी अनुमति और उनके अनुग्रह से हम यहाँ पर भागवत कथा करने के लिए बैठे हैं। बार बार उनके चरणों में प्रणाम करते हैं कि वे हमें आशीर्वाद दें कि यहाँ पर भगवान और भगवान के भक्तों का गुणगान कर सके। तो आप सब भक्तों का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ की ओर से प्रस्थापित श्रीमद् भागवत सप्ताह के इस चतुर्थ दिवस में हार्दिक स्वागत करते हैं। यहाँ पर लगातार 3 दिनों से हम सब श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं। वास्तव में भागवत कथा श्रवण करना जीवन का सबसे बड़ा लाभ है और यह बात इस संसार के सबसे बड़े भक्त, सर्वोच्च भक्त गोपियों के द्वारा सिद्ध होती है। गोपियां भगवान को प्रार्थना करती हैं कि हे कृष्ण, तव कथामृतम तप्त जीवनम, कृष्ण आपकी कथा इस संसार में तपे हुए लोगों के लिए जीवन प्रदान करने वाली है। ये सत्य है, इस संसार में सब लोग तप रहे हैं काम क्रोध लोभ मोह मद माश्चर्य की अग्नि में। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपनी कविता में बहुत सुंदर लिखते हैं, संसार दावा नल लीढ़ लोक, ये संसार दावा नल की तरह जल रहा है। दावाग्नि उसे कहते हैं जो जंगल में अग्नि लगती है। जब वन में अग्नि लगती है चारों ओर से अग्नि है और वन में रहने वाले प्राणी उसमें फंस जाते हैं और उसमें भी बड़े बड़े गजराज जैसे प्राणी, यद्यपि बहुत सामर्थ्य है शक्ति है परंतु परवश है बिचारे, चारों ओर से आग है कहीं बाहर नहीं निकल सकते हैं। तो इस जगत में सब लोग दुखों के द्वारा तप रहे हैं परंतु उस तपे हुए लोगों को जीवन प्रदान करने वाली एकमात्र भगवान श्री कृष्ण की कथा है। कृष्ण कथा सुनकर या भागवत सुनकर हम हमारे सभी दुखों से सभी तापों से मुक्त हो सकते हैं और एक नया जीवन प्राप्त हो सकता है। तव कथामृतम तप्त जीवनम, कवि विरीडितम कल्म शापहम। और यह कथा बड़े बड़े कवियों के द्वारा गाई गई है और यह कथा सभी कलमशों को दूर करने वाली है। जीवन में जितने भी कलमश है जितने भी पाप है, अनंत अनंत जन्मों से जितने पाप हमारे हृदय में है, भागवत कथा सुनकर यह समस्त पापों से हम मुक्त हो सकते हैं। और इतना ही नहीं, श्रवण मंगलम श्रीमदाततम, यदि कोई व्यक्ति भागवत कथा सुनता है तो उनके जीवन में मंगल ही मंगल होता है, जीवन मंगलमय हो जाता है। क्योंकि यह कथा कोई साधारण व्यक्ति के नहीं, साक्षात अनंत कोटि ब्रह्मांड के नाथ परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण की है। और भगवान का स्वभाव है वे अमंगलों को हर लेते हैं और मंगल प्रदान करते हैं। यह कथा को सुनकर हमारे जीवन में मंगल आता है। और श्री मदाततम, इस कथा से श्री का अर्थ होता है सौभाग्य, श्री का अर्थ होता है सुख, श्री का अर्थ होता है ज्ञान, श्री का अर्थ होता है भक्ति प्राप्त होती। और भुवि गृणन्ति ते भूरि दार्जना, गोपियां अंत में कहती हैं कि संसार में वैसे तो कई प्रकार के दान हैं। कुछ लोग हॉस्पिटल बनाते हैं, कुछ लोग स्कूल बनाते हैं, कुछ लोग गरीबों को भोजन बांटते हैं, धन देते हैं, कंबल देते हैं, परंतु इस संसार में सर्वोच्च सर्वोपरि दान यदि कोई है तो है श्रीमद् भागवत कथा सुनाना। भूवि गृणन्ति ते भूरि दार्जना, इस भूमि पर सबसे भूरि दार्जना, सबसे बड़ा दानी वह है जो इस कथा का आयोजन करता है, कथा को कहता है। और उससे भी बड़े दानी कथा सुनने वाले हैं, क्योंकि यदि आप जैसे भक्त कथा सुनने के लिए न आए तो हम कहां से कथा करेंगे। तो आप सब धन्य हो, भगवान की पवित्र मंगलमय कथा सुनने के लिए यहां पर एकत्रित हुए हैं। और हम सबका परम सौभाग्य है कि हम यहाँ पर भगवान के परम भक्त महाभागवत प्रहलाद महाराज की कथा सुन रहे हैं। वास्तव में प्रहलाद महाराज की कथा यहाँ पर करने के लिए हिजगिरिस गुड़ाकेश प्रभु ने मुझे प्रेरणा की थी और उनकी कृपा से मैं यहाँ पर प्रहलाद महाराज की कथा कहने में सक्षम हुआ। भगवान के भक्त की कथा सुनना बहुत मंगलमय कार्य है। एक आचार्य कहते हैं कि भगवान की कथा सुनकर हम भक्तों को प्रसन्न कर सकते हैं। यदि हम भगवान की कथा सुने तो भक्त प्रसन्न होते हैं, परंतु यदि भगवान को प्रसन्न करना है तो उनके भक्त की कथा सुननी चाहिए, क्योंकि भक्त की महिमा भगवान से भी ज्यादा होती है। भक्त की महिमा भगवान से भी ज्यादा होती है। एक बार ऐसा ही एक प्रश्न विद्वानों की सभा में उठा। बड़े बड़े एक से एक ज्ञानी और विद्वान पंडित बैठे थे और उसमें प्रश्न उठा, इस संसार में सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ी वस्तु क्या है। तब कुछ विद्वानों ने कहा कि इस संसार में सबसे बड़ी पृथ्वी है, क्योंकि यह पृथ्वी कई जीवों का वजन उठाती है, सबको भोजन देती है। इस संसार में सबसे बड़ी पृथ्वी है। तब कुछ विद्वानों ने कहा, नहीं नहीं, पृथ्वी तो बहुत छोटा ग्रह है, पृथ्वी से बड़ा तो सूर्य है। यद्यपि दूर है इसलिए छोटा दिख रहा है, परंतु वे बहुत बड़ा है और उसी के प्रकाश से ये पृथ्वी में अन्न पैदा होते हैं, इसलिए पृथ्वी से बड़ा सूर्य है। तब एक विद्वान ने उस पंडित की बात को काटते हुए कहा, नहीं नहीं, सूर्य तो बहुत छोटा ग्रह है, उससे भी बड़ा ग्रह आध्यात्मिक जगत में वैकुंठ लोक है। वैकुंठ सबसे बड़ा है। तब एक ज्ञानी ने कहा कि वैकुंठ से भी बड़े वैकुंठ पति भगवान श्री विष्णु हैं। भगवान विष्णु वैकुंठ पति वैकुंठ से भी बड़े हैं, क्योंकि उनसे ही वैकुंठ प्रकट होता है। इसलिए अंत में निर्णय निकला कि भगवान विष्णु बड़े हैं, परंतु अंत में एक भक्त ने अंतिम अल्टीमेट डिसीजन दिया कि वही विष्णु श्रीमद् भागवतम में कहते हैं, अहम भक्त पराधीनो, मैं मेरे भक्त के अधीन हूं, मैं मेरे भक्त के पराधीन हूं। इसलिए फाइनल डिसीजन यह हुआ कि विष्णु से भी भगवान से भी बड़े भगवान के भक्त हैं, भगवान से भी महान है। तो वैसे ही एक महान भक्त, भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की कथा यहां पर हम श्रवण कर रहे हैं। कथा सुनाने वाले मूल वक्ता श्री नारद मुनि है और सुनने वाले धर्मराज युधिष्ठिर है, और यह कथा राजसूय सभा में सुनाई जा रही है, जहां पर एक से एक राजा महाराजा बैठे हैं, पितामह भीष्म बैठे हैं, यहां तक भगवान कृष्ण भी यह कथा सुन रहे हैं। और उस सभा में नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को प्रहलाद महाराज के गुणों का वर्णन कर रहे हैं। प्रहलाद महाराज के कुछ गुणों का वर्णन हमने कल सुना। अगले श्लोक से, सातवें स्कंद के चतुर्थ अध्याय के 32वें श्लोक से आज हम प्रारंभ करते हैं। नारद मुनि प्रहलाद महाराज का गुण बताते हुए कहते हैं, दास वत्सन तार्यांग्री पितृवदीन वत्सल भ्रातुर्वदृशे स्निग्धो गुरुषु ईश्वर भावन। प्रहलाद महाराज के गुण बताते हुए नारद जी कहते हैं कि उनमें एक गुण है, वो है दासवत सन्न तार्यंग्री। आर्य का अर्थ होता है वरिष्ठ, आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ भक्त। प्रहलाद महाराज श्रेष्ठ लोगों के प्रति, श्रेष्ठ का अर्थ होता है माता पिता गुरु स्वजन इत्यादि, यह श्रेष्ठ लोगों के प्रति सन्नत झुके हुए रहते थे। किस प्रकार? दासवत, एक दास के समान झुके हुए आर्य लोगों के सामने प्रहलाद महाराज पेश आते थे। और प्रहलाद महाराज को कोई भी व्यक्ति मिलता तो वे उसे प्रणाम करते थे। अपने से जो बड़े हैं, बड़े व्यक्ति को प्रहलाद महाराज मिलते ही दंडवत प्रणाम करते थे, अपना सिर झुका देते थे। दासवत सन्नत आर्यंघ्री, अंघ्री का अर्थ होता है चरण। प्रहलाद महाराज आर्य श्रेष्ठ जनों के चरणों में अपना सिर नवाते थे, प्रणाम करते थे। ये सत्य बात है, यदि हमें किसी व्यक्ति को प्रसन्न करना हो तो हमें प्रणाम करना सीख लेना चाहिए। इस संसार में देखा गया है प्रणाम करने में लोग बहुत आलस करते हैं, परंतु प्रणाम करना एक बहुत बड़ा गुण है जो प्रहलाद महाराज में है। और मनुष्य जीवन प्राप्त करके, इतनी सुंदर बुद्धि प्राप्त करके, यदि कोई व्यक्ति गुरु और भगवान के चरणों में अपना सिर नहीं नवाता है, नहीं झुकाता है, तब तो वह सिर कुछ काम का नहीं है। कहते हैं, सो सिर कटी संबर तुला, जोन नमत गुरु हरि पद मूला। जो सिर गुरु और हरि के चरणों में झुकता नहीं है, ऐसे सिर तो कट जाने के योग्य है। प्रहलाद महाराज अपने से श्रेष्ठ लोगों को मिलकर, उनका दर्शन करके सबसे पहले उन्हें प्रणाम करते थे। प्रणाम से हम किसी भी व्यक्ति को जीत सकते हैं। एक बार महाभारत के प्रसंग में कुरुक्षेत्र की भूमि में जब कौरव और पांडवों के बीच में युद्ध चला, तब बहुत बड़ा प्रश्न उठा कि द्रोणाचार्यों को कैसे मारा जाए, क्योंकि द्रोणाचार्य को मारने का उपाय कोई नहीं जानता था। कैसे मारा जाए, कैसे मारा जाए, तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि अर्जुन, कल सुबह भोर में आप द्रोणाचार्य के पास जाइए और उन्हें प्रणाम कीजिए। प्रणाम करने पर वे आपको कुछ भी देने के लिए तैयार हो जाएंगे, और जब भी आपको कुछ देने के लिए तैयार हो जाएंगे, तब उसे पूछ लेना कि गुरुजी आप कैसे मरोगे, आपको मारने का उपाय बताओ। भगवान ने जैसा कहा अर्जुन ने वैसा ही किया। दूसरे दिन द्रोणाचार्य के पास गए, अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर दंडवत प्रणाम किए, और प्रणाम करते ही द्रोणाचार्य प्रसन्न हो गए। कहते हैं कि हमसे जो वरिष्ठ होते हैं, श्रेष्ठ होते हैं, आर्य होते हैं, वे प्रणाम करने से प्रसन्न रहते हैं। अर्जुन ने प्रणाम किया, द्रोणाचार्य प्रसन्न हो गए। कहा, वत्स बोलो, क्या चाहिए? तो भगवान ने सिखा कर रखा था, अर्जुन ने कहा कि गुरुजी आप मुझे इतना बता दीजिए कि आप कैसे मरोगे, आपके मरने का उपाय बताइए। अब इतना कहते ही द्रोणाचार्य ने अपना मरने का उपाय बता दिया। अर्जुन, जब कोई व्यक्ति युद्ध के समय मेरे पुत्र का अनिष्ट समाचार मुझे देगा, मेरे पुत्र का अनिष्ट खबर कोई मुझे देगा, उस वक्त मेरी सारी शक्ति क्षीण हो जाएगी, उस वक्त मुझे कोई भी मार सकता है। बता दिया उपाय। कथा बहुत छोटी है, परंतु उपदेश बहुत बड़ा है। द्रोणाचार्य ने केवल प्रणाम करने पर अपने मरने का उपाय बता दिया। प्रणाम में इतनी ताकत है, प्रणाम में इतनी शक्ति है। इसलिए हमें चाहिए कि हमसे जो आर्य है, श्रेष्ठ है, उनके चरणों में हम प्रणाम करें। प्रहलाद महाराज अपने से श्रेष्ठ लोगों के चरणों में नित्य झुकते हुए रहते थे, झुके हुए रहते थे। हमें कभी भी हमसे जो श्रेष्ठ है उसे बड़ा नहीं बनना चाहिए, उसके सामने मूढ़ की तरह पेश आना चाहिए। यदि हम उसे कृपा चाहते हैं तो निश्चित हम पर उसी की कृपा हो सकती है जो हमसे आगे हैं, हमसे बड़े हैं। परंतु इस संसार में होता है कि कुछ लोग गुरु के पास जाकर भी अपना गुणगान करने लगते हैं। यदि हम गुरु के पास, अपने से वरिष्ठ भक्त के पास, वैष्णव के पास जाते हैं, और हम में यदि बहुत ज्ञान भी है, फिर भी वह ज्ञान हमें हमसे वरिष्ठ भक्त के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए, जब तक उनकी आज्ञा न हो। यदि हम उसकी कृपा चाहते हैं तो हमेशा झुक कर रहना चाहिए। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर ने प्रेम भक्ति चंद्रिका में बहुत सुंदर कहा है, कहते श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु। श्री गुरुदेव करुणा के सिंधु है, करुणा के सागर है, परंतु उनकी करुणा किसके लिए है? अधम जनों के लिए, बड़े ज्ञानी पंडितों के लिए नहीं। गुरु में भगवान से भी ज्यादा करुणा होती है, परंतु वे करुणा अधम जनों के लिए है, वे अधम जनों के बंधु हैं। इसलिए गुरुओं के सामने, आर्य श्रेष्ठ लोगों के सामने दासवत सन्नत होते हुए, झुकते हुए उनके सामने रहना चाहिए, मूढ़ बनकर पेश आना चाहिए, क्योंकि यह कृपा का जो स्वभाव है पानी की तरह है। पानी को यदि आप छोड़ोगे तो वह ऊपर नहीं जाएगा, वह नीचे जाएगा। ठीक उसी प्रकार हमसे वरिष्ठ, हमसे बड़े गुरु के सामने यदि हम झुके हुए रहेंगे तो उनकी कृपा नीचे आएगी, ऊपर नहीं जाएगी। इसलिए सदैव हमसे जो आगे हैं, हमसे बड़े हैं, श्रेष्ठ हैं, आर्य हैं, उनके सामने दासवत, दास की समान सन्नत झुके हुए रहना चाहिए। प्रहलाद महाराज में यह गुण था, अपने से श्रेष्ठ के सामने दासवत झुके हुए रहते थे। आगे नारद मुनि कहते हैं, पितृवत दीन वत्सल। बड़ों के सामने वे झुककर रहते थे, और जो इस संसार में दीन जन होते हैं, दीन का अर्थ होता है गरीब, और यहां पर दीन का अर्थ होता है हीन। कुछ लोग गुणों में हीन होते हैं, बिचारे में गुण नहीं होते हैं, बुद्धि नहीं होती है। दीन का अर्थ होता है धन में हीन, गरीब लोग। दीन का अर्थ होता है ज्ञान में हीन। दीन का अर्थ होता है समाज में हीन, जिसका समाज में कोई किसी को बुलाता नहीं है। दीन का अर्थ होता है विद्या में हीन, और दीन का एक होता है स्वास्थ्य में हीन, जो रोगी है। तो इस प्रकार से जो हीन लोग होते थे उनके प्रति प्रहलाद महाराज पितृवत दीन वत्सल, पितृ पिता के समान पेश आते थे। जैसे एक पिता होते हैं, उनका पुत्र यदि बीमार होता है, उनका पुत्र यदि दीन होता है, तो उसका उसके प्रति और ज्यादा प्रेम होता है। अब देखिए, एक पिता के यदि 5 पुत्र हैं और उसमें 4 पुत्र बहुत बुद्धिमान हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, और एक पुत्र बेचारा गवार है, बुद्धि थोड़ी कम है, तो उस 4 से ज्यादा प्रेम पिता को उस गवार पुत्र के ऊपर होगा। ठीक उसी प्रकार जो दीन होते थे उनके प्रति प्रहलाद महाराज पिता के समान पेश आते थे। जैसे पिता अपने पुत्र से प्रेम करते हैं, वैसे प्रहलाद महाराज दीन जनों के ऊपर पुत्र के समान प्रेम रखते थे। आगे नारद मुनि कहते हैं, भ्रातृवत सदृशे स्निग्धो। प्रहलाद महाराज के समान वाले जो थे, समान का अर्थ होता है प्रहलाद महाराज के धन में जो बराबरी वाले थे, प्रहलाद महाराज में सुंदरता में जो समान थे, ज्ञान में जो समान थे, और सामाजिक स्थिति में जो प्रहलाद के समान थे, उम्र में जो प्रहलाद के समान थे, तो अपने से समान लोगों के साथ भ्रातृवत भाई के समान पेश आते थे। देखिए, संसार में हमें किन किन लोगों के साथ किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए, प्रहलाद महाराज की जीवनी से पता चलता है। भ्रातृवत दीन वत्सल, भ्रातृवत शूद्र से स्निग्ध, अपने समान वालों के साथ भाई की समान पेश आते थे। भाई का अर्थ होता है कि मान लीजिए 2 भाई हैं, उनमें से एक भाई बहुत धन कमा रहा है, तो दूसरे भाई को ईर्ष्या नहीं होती है, वे खुश होते हैं कि चलो ये बहुत पैसे कमा रहा है। खैर, हालांकि कलयुग में तो भाई भाई में भी ईर्ष्या होती है, यद्यपि ये द्वापर युग में कथा कह रहे थे, कलयुग में थोड़ा बदल गया है, भाई भाई में आज ईर्ष्या होती है। परंतु जो अच्छे भाई होते हैं, अपने भाई की प्रगति को देखकर जो प्रसन्न होते हैं, वैसे ही प्रहलाद महाराज अपने से जो बराबरी वाले थे उनके साथ भाई की तरह प्रेम करते थे। और गुरुषु ईश्वर भावना, और अपने गुरु के प्रति कहते हैं ईश्वर भावना। गुरु में ईश्वर का भाव रखते थे। सब लोग को यह समझना चाहिए, गुरु को भगवान नहीं मानते थे। जैसे ही संसार में कुछ लोग गुरु को भगवान बनाकर बैठ गए हैं, नहीं, गुरुषु ईश्वर भावना, गुरु का भगवान की समान आदर करते थे। और यह सत्य है, गुरु का भगवान के समान ही आदर होना चाहिए, क्योंकि गुरु ही एक ऐसे तत्व है जो भगवान को हमारे सामने प्रकट करते हैं। गुरु का अर्थ होता है गु शब्द अंधकारोस्ति, रु शब्द तद निरोधक। गु का अर्थ होता है अंधकार और रु का अर्थ होता है प्रकाश। जो व्यक्ति हमें अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश में, उजाले में लेकर जाए, उसे गुरु कहा जाता है। गुरु के द्वारा हम भगवान को जान सकते हैं, भगवान को समझ सकते हैं, भगवान के प्रति भक्ति कर सकते हैं। इसलिए जीवन में गुरु बनाना अति आवश्यक है और गुरु के प्रति पूर्ण श्रद्धा, विश्वास और पूर्ण भगवान की तरह आदर होना चाहिए। और साक्षात भगवान तो यहां तक कहते हैं, प्रथम अस्तु गुरु पूज्य, कहते हैं सबसे पहले आप गुरु की पूजा करो, ततश्चैव मम अर्चनम, उसके बाद मेरी अर्चना करो। और यदि ऐसा नहीं करोगे तो कुरुवम सिद्धि अवाप्नोति अन्यथा निष्फलम भवे, और यदि ऐसा नहीं करोगे तो आपका सब कुछ किया हुआ निष्फल हो जाए। इसलिए गुरु को भगवान की तरह आदर देना चाहिए। और गुरु की महिमा हमारे शास्त्र में बहुत है। कहते एक बार भगवान रूठ गए, हरो रुष्टे गुरु यात्रा। यदि भगवान रूठ गए तो आप गुरु के शरण में जाओ तो गुरु कैसे भी करके मना लेंगे, परंतु गुरु रुष्टे न कश्चन, परंतु गुरु एक बार रूठ जाए, गुरु के प्रति अपराध हो जाए तो उसे कोई नहीं बचा सकता है। तस्मात् सर्व प्रयत्नेन, इसलिए सभी प्रयत्नों के साथ गुरुदेव को प्रसन्न रखना चाहिए। गुरु के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, गुरु के प्रति भगवान के समान आदर होना चाहिए। इसका अर्थ यह नहीं है कि गुरु भगवान हो गए। प्रसिद्ध श्लोक आप सब लोग जानते होंगे, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देव महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरु वे नमः। सब लोग जानते हैं, सब लोग बोलते हैं, रटते हैं, परंतु इसका आशय समझना चाहिए, इसका भाव समझना चाहिए। गुरु ब्रह्मा नहीं है। ब्रह्मा जी तो इतनी बड़ी सृष्टि करते हैं, इतनी प्रजा प्रकट करते हैं, गुरु तो बेचारे विवाह भी नहीं किए हैं, गुरु ब्रह्मा कैसे हो सकते हैं? गुरु विष्णु, भगवान विष्णु इस संसार को मेंटेन करते हैं, पालन करते हैं, गुरु तो एक घर गृहस्थी भी नहीं किए हैं, गुरु विष्णु कैसे हो सकते हैं? गुरु महेश्वर, शिव जी प्रलय करते हैं, गुरु कहां प्रलय करते हैं? इसका अर्थ यह नहीं है कि गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु महेश्वर है, गुरु ब्रह्म है, नहीं, गुरु ब्रह्मा विष्णु और महेश के समान पूजनीय है, उतना आदर देना चाहिए। गुरुषु ईश्वर भावना, प्रहलाद महाराज अपने गुरु में भगवान के समान आदर रखते थे। और चैतन्य चरितामृत की रचना करने वाले कृष्णदास कविराज गोस्वामी भी अपने गुरु के प्रति यही कहते हैं। कहते हैं, यदि मोर गुरु है चैतन्य रदास, यदि मेरे गुरु अपने आप को चैतन्य भगवान का दास मानते हैं, परंतु मेरे लिए तो वे भगवान के समान पूजनीय है, आदरणीय है। तो वास्तव में गुरु के प्रति प्रेम, श्रद्धा, विश्वास और पूर्ण आदर होना चाहिए, तब जाकर हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। तो प्रहलाद महाराज गुरुषु ईश्वर भावना, गुरु के प्रति भगवान की तरह भाव रखते थे। आगे गुण बताते हुए नारद मुनि कहते हैं, विद्या अर्थ रूप जन्माढ्यो। प्रहलाद महाराज में संपूर्ण विद्या, धन, सौंदर्य और बहुत सुंदर कुल में उनका जन्म हुआ था, कुलीन परिवार में थे। विद्या अर्थ रूप और जन्म, विद्या प्रहलाद महाराज के जीवन में विद्या, सभी विद्या उन्होंने प्राप्त कर ली थी। उस समय जितनी विद्या थी सारी विद्या प्रहलाद महाराज पढ़ चुके थे। अर्थ हिरण्यकश्यप के पास आपने दो दिन पहले सुना, धन की कोई कमी नहीं थी। हिरण्यकश्यप का अर्थ ही होता है हिरण्य का अर्थ है सोना, कश्यप अर्थात बिस्तर, जो सोने के बिस्तर के ऊपर सोता है उनके पास धन की क्या कमी हो सकती है। जो स्वर्ग का राजा बनकर बैठा है, तीनों भुवन के सभी देवता उनके चरणों में है, समस्त धन का अधिपति है। प्रहलाद महाराज के पास धन की कोई कमी नहीं, विद्या की कोई कमी नहीं और रूप, आचार्य गण कहते हैं कि प्रहलाद महाराज भगवान विष्णु की तरह सांवले और सुंदर थे। और जन्माठ्य, उनका जन्म कहते हैं बहुत अच्छे कुल में, ब्रह्मा जी से चौथी पीढ़ी में उनका जन्म था। हमारा तो कोई गिनती नहीं है, हजारों पीढ़ी निकल गई होगी। ब्रह्मा जी के पुत्र हुए मरीचि, इस पुत्र में बहुत तेज निकलता था इसलिए इनका नाम ही मरीचि हुआ। और मरीचि के कश्यप और कश्यप के दीति के द्वारा हिरण्यकश्यप और हिरण्यकश्यप के प्रहलाद, ब्रह्मा जी से चौथी पीढ़ी में जन्म भी उच्च कुल में। चाणक्य पंडित कहते हैं कि यह चारों चीज भक्ति में पतन कराने वाली है, और इस चार में से एक भी यदि प्राप्त हो जाए फिर भी व्यक्ति का पतन हो सकता है। प्रहलाद महाराज के पास चारों था फिर भी भगवान के शुद्ध भक्त, भक्ति की चरम सीमा पर। ये सत्य है, ये सब चीज महारानी कुंती अपनी प्रार्थना में कहती हैं, जन्म ऐश्वर्य श्रुति श्री भी एद मान मदह कुमान नैवा हत्य विधातुम वे त्वाम अकिंचन गोचर। हे कृष्ण, जिनके पास धन है, जिनके पास ऐश्वर्य है, ज्ञान है और उच्च कुल में जिनका जन्म हुआ है, वे आपकी भक्ति नहीं कर सकते। संसार में हम प्रकट देखते हैं जिसके पास थोड़ा भी धन आ जाता है अपना पांव पृथ्वी पर स्पर्श नहीं होने देता है, थोड़ा भी धन आ जाए। प्रभुपाद जी तो धन को नशा कहते हैं, ये धन नशा के समान है, यहां तक नशा से भी दुरू है यह धन। क्योंकि नशा तो जब हम बोतल के द्वारा पेट में जाती है तब चढ़ती है, शराब जब पेट में जाती है तब चढ़ती है, परंतु यह धन पाकिट में आ जाता है व्यक्ति जमीन से 2 फुट ऊपर चलने लगता है, अंधा हो जाता है व्यक्ति। यह धन, यह लक्ष्मी का वाहन आप जानते हैं कौन है? उल्लू। उल्लू जो होता है वह दिन को नहीं देखता है, रात को देखता है। और जिनके पास लक्ष्मी जी की ये थोड़ी भी कृपा हो जाती है, धन आ जाता है, तो फिर वो दिन को नहीं देखते हैं, रात को देखते हैं। नहीं देखने का अर्थ है किसी को सम्मान नहीं देते हैं, उनकी भाषा बहुत बिगड़ जाती है, अपने से बड़े बड़े बुजुर्ग है, बूढ़े हैं, फिर भी उसे गाली देते हैं, अंधे हो जाते हैं धन के मद में। और इसका दूसरा अर्थ यदि हम ले तो जिनके पास ये धन आ जाता है वह दिन को नहीं दिखेंगे, वे रात को दिखेंगे, बियर बार में या कहीं और गलत गलत जगह। जिसके पास धन है वे भजन नहीं कर सकता है। ये धन कोई खराब वस्तु नहीं है, धन बहुत अच्छी चीज है, परंतु उसका इस्तेमाल ठीक प्रकार से होना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं कि इस धन को, जिसके पास ये धन है उसे अपने जीवन को मर्यादित रखना चाहिए, नहीं तो वो मद के अभिमान में वह अंधा हो जाएगा। जैसे हमारे शास्त्र में कथा आती है नहुस राजा की, राजा नहुस इतने महान राजा थे। जब इंद्र ने वित्रासुर के साथ युद्ध किया, कहा जाता है कि 1000 वर्ष तक कमल की डंडी में रहा, तब उस समय स्वर्ग के देवताओं ने नहुस राजा को स्वर्ग की गद्दी पर बिठाया, और जब यह इंद्र के आसन के ऊपर बैठे मद अभिमान हो गया। इस संसार में धन और पद का अभिमान बहुत दुरू है। व्यक्ति बहुत अच्छा होता है जब उसके पास धन और पद नहीं होता है, परंतु जैसे ही धन और पद आ जाता है वह अंधा हो जाता है। इंद्र के आसन के ऊपर बैठे राजा नहुस और अभिमान हुआ, मद हुआ, और सोचा कि इंद्र का आसन मेरा है तो इंद्र की पत्नी भी मेरी है, इंद्र की पत्नी को बुलाकर कहा कि तुम मेरे साथ विवाह करो, मैं तुम्हारे साथ संग करना चाहता हूं। इंद्र की पत्नी डर गई, क्या करे, परंतु देवताओं में बहुत बुद्धि होती है। उनके ऊपर जब विकट परिस्थिति आती है तब वे भगवान और गुरु के शरण में जाते हैं। इंद्र की पत्नी ने कहा एक काम करो, मैं तुम्हें कल उत्तर दूंगी। तुरंत वह देवताओं के गुरु बृहस्पति के पास आई और कहा कि नहुष राजा अपने साथ विवाह करने के लिए कह रहे हैं, मुझे नहीं करना है। देव गुरु बृहस्पति ने कहा एक काम करो, मैं जो कहता हूं वह बात नहुष राजा को कह देना। इंद्र की पत्नी आई, नहुष राजा को कहा कि मैं आपसे विवाह अवश्य करूंगी, परंतु मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है? कहा कि यदि सप्त ऋषि, सात ऋषि, सप्तर्षि यदि आपको पालकी में बिठाकर और उस पालकी को ढोकर मेरे पास लाए तब मैं आपके साथ विवाह कर लूंगा। नहुष राजा ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं इतना प्रतापी हूं, सप्तर्षि क्यों मेरी पालकी नहीं ढोएंगे। दूसरे दिन सप्तर्षियों के पास गया, पालकी बनाई, इंद्र बैठा और सातों ऋषियों को कहा चलो उठाओ। सातों ऋषि पालकी को उठाए, परंतु ये कहते कामातुराणाम न भय न लज्जा। जब किसी के हृदय में काम छा जाता है, ये काम का वेग आंधी की तरह आता है, तूफान की तरह व्यक्ति की बुद्धि को उड़ा देता है। काम का वेग आया, राजा नहुष बहुत जल्द वहां पर पहुंचना चाहता था। सप्तर्षियों को कहता रहा जल्दी चलो, जल्दी चलो, जल्दी सरको, परंतु ये बेचारे बूढ़े जल्दी नहीं चल रहे थे, धीरे धीरे अपनी गति से चल रहे थे। राजा नहुष इसे सहन नहीं कर सके और पालकी में बैठकर अपना पांव निकालकर जोर से एक ऋषि मुनि को धक्का मार के कहा कि जल्दी नहीं चलते हो। और दुर्भाग्यवश वो ऋषि दुर्वासा मुनि थे। श्राप देने में जिसने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम लिखाया है ऐसे दुर्वासा ऋषि। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि काम से अंधा होकर हमारा अपराध कर रहा है, धन और पद के मद और अभिमान में आकर हम ऋषि मुनियों का अपराध किया, जहां मैं तुम्हें श्राप देता हूं तू अजगर बन जा। तुरंत राजा नहुष का पतन हो गया। मैं यह कहना चाहता हूं, व्यक्ति को जब पद और धन ऐश्वर्य प्राप्त होता है तब उसका पतन हो जाता है, वे भजन नहीं कर सकता है। परंतु प्रहलाद महाराज में यह सब कुछ था, विद्या थी, रूप था, धन था, ऐश्वर्य था, ज्ञान था, फिर भी भगवान के शुद्ध भक्त। ऐसा भी नहीं है कि सभी धनी एक समान होते हैं। हमारे इस्कॉन में एक से एक धनी है। अम्बरीश फोर्ड कंपनी के जो मालिक हैं, वे हमारे इस्कॉन मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं। यदि किसी के ऊपर भगवान के भक्त की कृपा हो जाती है तो वह कैसा भी क्यों न हो वे भक्त बन ही जाते हैं। प्रहलाद महाराज विद्या अर्थ रूप जन्माढ्य ये सब कुछ होते हुए भी भगवान के परम भक्त थे। और नारद मुनि आगे प्रहलाद महाराज का गुण बताते हुए कहते हैं मानस स्तंभ विवर्जित। मान का अर्थ होता है सम्मान की भावना। हमारे हृदय में कभी कभी बहुत होता है कि लोग हमें सम्मान दे, हमारी प्रशंसा करें। यदि हम रास्ते से जा रहे हैं और सुन लिया कि ये हमारी बात कर रहे हैं, हमारी प्रशंसा कर रहे हैं, तो हम खड़े रह जाएंगे, चलो सुने हमारे लिए क्या बोल रहे हैं। और उस वक्त कोई यदि हमें हजारों रुपया भी दे दे, एक और हजारों रुपये हैं और एक और हमारी प्रशंसा है, वे हजारों को ठुकरा देगा। प्रशंसा बहुत अच्छी लगती है, सम्मान बहुत अच्छा लगता है। परंतु प्रहलाद महाराज मानस स्तंभ विवर्जित, थोड़ा भी मान और सम्मान लेने की भावना नहीं थी। और कहते स्तंभ, स्तंभ का अर्थ होता है मद, स्तंभ का एक अर्थ होता है खंभा, खंभे को भी स्तंभ कहा जाता है। खंभा को आप देखें बिल्कुल सीधा ही रहता है, कभी झुकता नहीं है। तो जो स्तंभ जैसे होते हैं वे कभी झुकते नहीं है, उसे मद होता है, थोड़े भी नहीं झुकते हैं। परंतु प्रहलाद महाराज स्तंभ विवर्जित, बिल्कुल स्तंभ से विवर्जित थे, विशेष रूपेण वर्जित, थोड़ा भी मन में भावना भी नहीं थी। और इस प्रकार ये मद से मुक्त होकर वे सभी लोगों के चरणों में झुकते रहते थे, प्रणाम करते रहते थे। मान लेने की भावना नहीं थी, मान देने की भावना थी। प्रणाम लेने की भावना नहीं थी, प्रणाम देने की भावना थी। जैसे हमारे आचार्य सनातन गोस्वामी प्रतिदिन 1000 वैष्णव को प्रणाम करते थे, प्रतिदिन। इसे कहते हैं मानस स्तंभ विवर्जित। संसार में और किसी को प्रणाम करे या न करे, परंतु वैष्णव देखकर तो उसे जरूर प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि वैष्णव बहुत महान होते हैं और वैष्णव की महिमा बड़े बड़े देवता शिवजी जानते हैं। पद्म पुराण की कथा है, एक बार शिवजी और देवी पार्वती नंदी बैल पर सवार होकर जा रहे थे, तो शिवजी ने बैल को रुका दिया और रुकाकर नीचे दंडवत प्रणाम किए और प्रणाम करके वापस आए। पार्वती जी ने कहा कि यहां तो कोई नहीं है, यहां कोई नहीं है, तो प्रभु आपने प्रणाम किसे किया? तब शिव जी ने अपनी भारिया पार्वती को इतना ही कहा कि देवी, आज से 10,000 वर्ष पहले इस स्थान पर भगवान विष्णु का एक भक्त भक्ति करता था, यहां रहता था, इसलिए आज भी यह भूमि प्रणाम करने के लायक है। इसे कहते हैं वैष्णव की महिमा, प्रणाम की महिमा। वर्णन है कि और फिर शिवजी नंदी पर बैठे और आगे गए और रण प्रदेश आया जहां पर कोई पेड़ नहीं, कुछ नहीं। शिवजी ने नंदी बैल को रुकाया और रुकाकर फिर से दंडवत किया। पार्वती जी ने सोचा कि आज प्रभु की तबीयत बिगड़ गई लगती है, न जाने बार बार प्रणाम कर रहे हैं। पार्वती ने पूछा, अब यहां क्या हुआ? शिवजी ने कहा, देवी आप नहीं समझोगी, आज से 10,000 वर्ष के बाद भगवान विष्णु का एक भक्त यहां पर आकर भक्ति करेगा, इसलिए यह भूमि आज से परम पवित्र है। जहां पर 1,000-10,000 वर्ष के बाद वैष्णव आने वाले हो, वहां पर शिवजी प्रणाम करते हैं, तो वैष्णव को देखकर हम क्यों प्रणाम न करें? पूजनीय है, प्रणम्य है। तो प्रहलाद महाराज मानस स्तंभ विवर्जित, सम्मान लेने की भावना नहीं थी, अपनी प्रशंसा सुनने की भावना नहीं थी। ठाकुर भक्तिविनोद तो बहुत सुंदर कहते हैं, ये मान और प्रतिष्ठा जो है वैसे हमें बहुत अच्छी लगती है। हम कभी कभार कहते हैं कि आप मेरी प्रशंसा न करो, परंतु अंदर से जो सूक्ष्म भावना होती है कि नहीं, ये प्रशंसा करे तो बहुत अच्छा है। परंतु यह मान और प्रतिष्ठा, शुकरेर विष्ठा, ये मान और प्रतिष्ठा तो सुअर की विष्ठा के समान है। और यदि कोई अपनी मान और प्रतिष्ठा सुनना चाहता है तो वैसा ही है कि वह सुअर की विष्ठा खाए। तो इस प्रकार से हमें यह सब दोषों से बचना चाहिए और प्रहलाद महाराज की तरह हमें गुण को अर्जित करना चाहिए। आगे नारद मुनि प्रहलाद महाराज का गुण गिनाते हैं।
नोद्विग्न चित्तो व्यसनेषु निस्पृह श्रुते सुदृष्टे सुगुणे स्ववस्तुद्रि दान्तेन्द्रिय प्राण शरीर धि सदा प्रशांत कामो रहिता सुरो सुर।
आगे प्रहलाद महाराज का गुण बताते हुए कहते हैं, न उद्विग्न चितो व्यसनेषु निस्पृह। प्रहलाद महाराज कभी भी उद्विग्न नहीं होते थे, न उद्विग्न चित्तो, उनका चित्त कभी भी उद्विग्न नहीं होता था, और विकट से विकट स्थिति में भी, संकट स्थिति में भी कभी भी उनकी बुद्धि उद्विग्न नहीं होते थे। यद्यपि प्रहलाद महाराज के जीवन में कितनी दुर्घटना, कहते हैं प्रहलाद महाराज के जीवन में संकट नहीं आते थे, उनका जीवन ही संकट से बना हुआ था। क्योंकि प्रहलाद महाराज का सबसे बड़ा द्रोही तीनों भुवन का राजा हिरण्यकश्यपु और उसमें भी उनका पिता 2400 घंटा साथ में रहने वाला, और ऐसा हिरण्यकश्यपु के द्वारा प्रहलाद महाराज को बहुत बहुत मारने के प्रयास किए गए। कहते हैं प्रहलाद महाराज को विचलित करने के लिए, भक्ति से डगाने के लिए बहुत प्रयास। आगे सुखदेव गोस्वामी नारद मुनि गिनाते हैं, दिग्गजे दंद शुकेश अभिचाराव पातने, बड़े बड़े हाथियों के द्वारा मारने का प्रयास, कृत्या के द्वारा मारने का प्रयास, पर्वतों से फेंक कर मारने का प्रयास, भाला तलवार से मारने का प्रयास, परंतु ऐसी स्थिति में भी प्रहलाद महाराज की बुद्धि उद्विग्न नहीं होती थी, वे शांत रहते थे। ये भक्त का स्वभाव होता है। इस संसार में देखा गया है कुछ लोग, कुछ भक्त के जीवन में बहुत दुख आते हैं, और यह सत्य है, जो भक्ति करते हैं उनके जीवन में दुख आएंगे। आप इतिहास खोलकर देख लीजिए किसने भक्ति की है और किसके जीवन में दुख नहीं आए, आएंगे। भगवान स्वयं कहते हैं कि यदि कोई मेरी शुद्ध भक्ति करता है तो मैं उनके ऊपर अनुग्रह करता हूं, कृपा करता हूं। क्या कृपा करते हैं? कहते हैं तस्या अहम अनुग्रहणामि, मेरे शुद्ध भक्त के ऊपर मैं कृपा करता हूं। क्या? हरिष्य तद धनम शनि, उनका सभी धन हर लेता हूं। क्या ये कृपा है? परंतु भगवान परीक्षा लेते हैं, और हम तो देखते हैं समाज में जो भगवान की भक्ति करने लगा उसका बिजनेस आधा हो गया, क्योंकि मन भगवान में लग रहा है, चित भगवान में लग रहा है। और इतना ही नहीं, सबसे पहले धन हर लूंगा और उसके बाद उनके ही स्वजनों के साथ झगड़ा करा दूंगा। होता है हमारे साथ ऐसा? संसार के लोग, कुटुंबीजन कहते हैं ये तो भगत हो गए, ये तो चोटी वाले हो गए, अब ये हमारे घर नहीं आएंगे, बहुत बड़े देखे हैं भगत तुम्हारे जैसे, गाली देते हैं संसार के लोग, और झगड़ा हो जाता है। भगवान कहते हैं जिसके ऊपर मैं कृपा करता हूं सबसे पहले धन हर लेता हूं और फिर स्वजनों के साथ झगड़ा करा देता हूं। भक्ति करते करते जब स्वजनों के साथ झगड़ा हो जाए और धन कम हो जाए, समझ लेना कि भगवान की कृपा हो गई। और भगवान आगे कहते हैं कि ऐसी स्थिति में भी यदि कोई मेरे चरण को छोड़ता नहीं है, उनका धन खाली हो गया, स्वजनों के साथ झगड़ा हो गया, और ऐसी स्थिति में भी मेरा शरण पकड़कर रखता है, तब मैं उसे ऐसा स्थान देता हूं जो देवानाम अपि दुर्लभम, जो बड़े बड़े देवताओं की दुर्लभ है वैसा वैकुंठ दे देता हूं। ये भगवान की कृपा है। भक्तों के जीवन में कष्ट आते हैं, परंतु वह कष्ट भक्त को और निखार देते हैं। जैसे सोना होता है गोल्ड, सोने को यदि गर्म, सोना वैसे ही सोने में चमक होती है, परंतु सोने को यदि अग्नि में गर्म किया जाए, आग उसे लगाई जाए, तो जब हायर हीट के ऊपर सोना गर्म होता है तब उसकी चमक और बढ़ जाती है। वैसे भक्त के जीवन में जब दुख आते हैं तो उनका तेज, उनकी भक्ति निखर जाती है। और वास्तव में भक्ति में आने के बाद जीवन में जो भी होता है, दुख भी आते हैं, ये भगवान के प्रयोजन से आते हैं, भगवान की इच्छा होती है। जैसे आप रास्ते से जा रहे हो तो बहुत बड़ा पत्थर है, यदि आप उस पत्थर के सामने नहीं देखते हुए ऊपर देखते हुए चले तो वह रास्ते के पत्थर से आप टकरा कर गिर जाओगे, खून भी निकलेगा। परंतु यदि आप ध्यान रखते हुए चले तो उस पत्थर के ऊपर पांव देकर आप 1.5 फुट ऊपर हो जाओगे, ऊपर उठ जाओगे। ठीक उसी प्रकार भगवान हमारे जीवन में कष्ट देते हैं, यदि हम उस कष्ट को लेकर हमारी भक्ति छोड़ दिए, उससे विचलित हो गए, तो हमारा पतन हो जाएगा। परंतु उस कष्ट के समय में भी हम भगवान के चरण को पकड़ कर रखे तो हमारा भक्ति में स्थान और ऊपर हो जाएगा, हमारी भक्ति और बढ़ जाएगी। तो तो ये भक्त के जीवन में कष्ट भी भगवान की कृपा से आते हैं, भगवान की इच्छा से आते हैं। नहीं तो भक्त को भक्त का कोई बाल भी बांका कर सके, किसी में शक्ति नहीं है। तो प्रहलाद महाराज के जीवन में व्यसनेषु बहुत संकट आए, बहुत दुख आए, परंतु न उद्विग्न चीतो व्यसनेषु निष्प्रिय, परंतु वे उद्विग्न नहीं होते थे। अब आगे एक गुण बताते हैं नारद मुनि, श्रुतेषु दृष्टेषु गुणेषु वस्तु दृक्। प्रहलाद महाराज जो भी देखते थे, जो भी सुनते थे, वे सभी वस्तुओं को भौतिक वस्तु समझकर उसे निग्लेक्ट कर देते थे। प्रहलाद महाराज कई सारी वस्तु ये देखते थे, जैसे हम भी, हम जब इस संसार में सैर करते हैं, निकलते हैं, तो आज तो कलयुग के प्रभाव के कारण इतनी दुकानें हैं, इतने मॉल हैं, और ऐसे ऐसे वस्तु सजाकर रखते हैं कि हमारा मन हो जाता है कि हम इसे प्राप्त कर ले। यहां तक एडवर्टाइजमेंट करने वाले ऐसी एडवर्टाइजमेंट करते हैं और ऐसा भाव हमें आ जाता है कि इसके बिना तो हम रह ही नहीं सकते। जैसे ये मोबाइल, आज से 5 साल या 10 साल पहले ये मोबाइल नहीं था, सब लोग आराम से अपना जीवन बिताते थे, परंतु 2-3-4 साल मोबाइल का उपयोग करने लगे, अब मोबाइल के बिना कोई रह नहीं सकता है। तो ये भौतिक वस्तु, कहते हैं प्रहलाद महाराज ऐसी भौतिक वस्तु को देखते थे, सुनते भी थे, परंतु अवस्तुद्रिक, उसे अनदेखा कर देते थे। हम भी संसार में घूमते हैं, कुछ चीज बहुत अच्छी लगती है और तुरंत हमें उसे भोगने का मन हो जाता है। जैसे माताएं हैं, यदि कोई दूसरी माता ने अच्छी साड़ी पहनी है तो तुरंत घर पे आकर कहती है कि मुझे भी ऐसी साड़ी लेनी है। कोई गले में अच्छा नेकलेस देख लिया तो मुझे भी लेना है, बहुत देखा देखी होती है। प्रहलाद महाराज से सीखना चाहिए कि अवस्तुद्रिक, बहुत कुछ सुंदर सुंदर वस्तु देखते थे परंतु उसे अनदेखा कर देते थे। क्या समझकर कि यह भौतिक वस्तु है, गुणेषु यह भौतिक, यह तीनों गुणों की वस्तु है। और बहुत बहुत सुनते भी थे, जैसे हम भी कभी कभार सुन लेते हैं। कुछ भक्त होते हैं जो कभी सुनते नहीं, परंतु ट्रेन में आते जाते फिल्म के गाने सुनाई पड़ते हैं, और 25-30 साल पुराना यदि कोई फिल्म का गाना है तो फिर खड़े रह जाते हैं, आनंद आ जाता है और इच्छा हो जाती है कि चलो इसे सुनना चाहिए। परंतु प्रहलाद महाराज में वह गुण था कि वे देखे हुए सुनी हुई बात को अनदेखा कर देते। श्रुतेषु दृष्टेषु गुणेषु अवस्तुद्रिक। इतना ही नहीं, नारद मुनि आगे कहते हैं, दांतेन्द्रिय प्राण शरीर धी सदा। प्राण शरीर और बुद्धि को सदा अपने वश में रखते थे। प्राण, बुद्धि और शरीर, ये बुद्धि जो है, बुद्धि का काम है डिसीजन लेना। हमारे शरीर में 10 वस्तु है, 5 वस्तु 5 महत्तत्व, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, और 5 वस्तु सूक्ष्म है, उनमें 3 भौतिक है, 2 आध्यात्मिक है। 3 भौतिक वस्तु है मन, बुद्धि और अहंकार, और 2 वस्तु आध्यात्मिक है, आत्मा और परमात्मा। ये 10 चीजों से हमारा यह शरीर बना है और ये 10 चीजों का कुछ ना कुछ काम है। तो हमारे शरीर में जो मन है, मन का काम है सोचना, विचार करना, और मन में जब विचार आते हैं तो उस विचार को पूर्ण करना, उस विचार को सैंक्शन करना, ये काम बुद्धि का है। बुद्धि का काम है डिसीजन देना, निर्णय लेना। यदि हमारी बुद्धि ठीक है तो हम अच्छा निर्णय ले सकते हैं। मन में तो बहुत विचार उठते हैं, न जाने कैसे कैसे विचार उठते हैं मन में। यदि आप रात को आराम से बैठे और अपने पूरे दिन में मन में जो विचार आए हैं उसे आप एक पेपर में लिखकर पढ़ो तो हमें अपने आप को शर्म आ जाती है कि हमारा मन ऐसा सोचना है। इतने लोगों को गिरा दूं, इतने लोगों का ये कर दूं, मार डालूं, काट डालूं, इसको गाली दे दूं, ऐसे ऐसे विचार आते हैं मन में, बहुत विचार आते हैं। परंतु यदि बुद्धि ठीक है तो बुद्धि उस विचार को पूर्ण नहीं करने देती। इसलिए हमें हमारी बुद्धि को ठीक रखना चाहिए। कई बार सब लोग प्रश्न पूछते हैं कि हमारी बुद्धि को ठीक रखने के लिए क्या करना चाहिए। वैसे तो बुद्धि को ठीक रखने के लिए भगवान का भजन करना चाहिए, परंतु उसी के साथ साथ बुद्धि को ठीक करने के लिए भगवान का प्रसाद खाना चाहिए। क्योंकि कहते हैं यदि आप ठीक से भोजन नहीं खाते हो तो आपकी बुद्धि बहुत बिगड़ जाएगी। कहते हैं आहार शुद्ध सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धि ध्रिवा स्मृति, स्मृति लंबे सर्व ग्रंथि नाम विप्रमोक्ष। यदि आहार शुद्ध है तो आपकी बुद्धि शुद्ध हो सकती है। तो प्रहलाद महाराज इंद्रिया और बुद्धि के ऊपर अपना वश था, जितेंद्रिय थे। ये आगे एक बार आ चुका है, नारद मुनि दूसरी बार गिना रहे हैं कि वे जितेंद्रिय थे। और नारद मुनि आगे कहते हैं प्रशांत कामो, प्रहलाद महाराज प्रशांत काम थे। कहते प्रशांत काम का अर्थ होता है निष्काम। श्रीमद् भागवतम में यह प्रशांत शब्द बहुत कम लोगों के लिए आया है, और कम क्या, केवल मैं जब तक जानता हूं केवल दो लोगों के लिए आया है, एक तो प्रहलाद महाराज और दूसरा सुदामा के लिए। प्रशांत थे। कहते कृष्ण स्यासित सखा कश्चित ब्राह्मण ब्रह्म वित्तम विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय। कृष्ण के एक सखा थे, उनका नाम सुदामा था, और कैसे थे, कहते हैं प्रशांत। और यहां प्रहलाद को भी प्रशांत कहा जा रहा है। प्रकृष्ट रूपेण शांत थे। शांत का अर्थ होता है मन और बुद्धि बिल्कुल शांत, जिसका मन और बुद्धि उद्विग्न नहीं है। शांत की परिभाषा यदि हमारे शब्दों में दी जाए तो मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत बूढ़ा हो चुका है, घर वाले गाली देते हैं, और उतने में रास्ते में चलते हुए उसका एक्सीडेंट हो गया और हॉस्पिटल में उसे एडमिट किया गया। हॉस्पिटल में पता चला होश में आने के बाद कि उसके दोनों पांव कट गए हैं। एक तो बूढ़ा है, ऑलरेडी सब लोग गाली दे रहे थे, ऊपर से दोनों पांव कट गए, बच्चे रखने के लिए तैयार नहीं। एक तो शरीर का दुख है, मन का दुख है, अपने स्वजनों का दुख है, और बुढ़ापा का दुख है। ऐसी स्थिति में भी वह बूढ़ा भगवान का नाम निरंतर जपता रहे तो कहा जाएगा वह प्रशांत है। विकट से विकट स्थिति में भी जो भजन न छोड़े उसे शांत कहते हैं। और भक्तों शांति तब आती है जब हम भगवान का भजन करते हैं। इस संसार में सब लोग शांति लाना चाहते हैं, भाई शांति, थोड़ी शांति लेने दे मुझे, परंतु शांति वैसे नहीं मिलती है। न तो तपस्या करने से शांति मिलती है, न तो दान करने से शांति मिलती है। शांति एकमात्र भगवान की भक्ति से मिलती है। इसलिए भक्ति सामर सिंधु में रूप गोस्वामी कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति भक्ति करता है तो उसके जीवन में सबसे पहला क्या होता है, शांति अव्यर्थ कालत्वम निराशी मान शून्यता। सबसे पहले व्यक्ति शांत हो जाता है, उनकी बुद्धि यहां से कुछ कमा लू, यहां से कमा लू, यहां भागू वहां भागू, ये सब शांत हो जाता है, प्रशांत हो जाता है जब किसी के हृदय में भक्ति आती है। प्रहलाद महाराज शांत थे। और शांत का आचार्य गण दूसरा अर्थ करते हैं निष्काम। निष्काम जिसे किसी भी प्रकार का काम नहीं है, किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं है। वास्तव में भगवान के भक्तों में, भगवान श्री कृष्ण के भक्तों में यह देखा गया है, वे निष्काम होते हैं। वे कभी भी किसी से कुछ चाहते नहीं हैं। मैंने दृष्टांत दिया था जैसे केवट, केवट भगवान का भक्त था और भगवान ने कहा कि यह उतराई ले लो, तब केवट यही कहता है प्रभु मुझे नहीं चाहिए। भगवान विष्णु ने ध्रुव महाराज को कहा कि जो चाहिए वो मांग लो, ध्रुव महाराज ने नहीं मांगा, प्रभु कुछ नहीं चाहिए, आपका दर्शन हो गया सब कुछ प्राप्त हो गया। और वहां केवट भगवान से कहता है अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, केवल आपकी कृपा चाहिए। भगवान के भक्त निष्काम होते हैं। और वास्तव में प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बात कहते हैं कि ऐसे निष्काम भक्तों का ही संग करना चाहिए। यदि कथा भी सुननी है तो कथा भी निष्काम भक्तों से सुनना चाहिए। इस संसार में दुख के साथ कहना पड़ता है। कुछ लोग बहुत बड़े कथावाचक होते हैं और जब वे कथा करते हैं तो हजारों लोग उपस्थित हो जाते हैं, परंतु दुख की बात यह है कि वे धर्म के ऊपर बोल रहे हैं, निष्काम के ऊपर बोल रहे हैं, परंतु स्वयं निष्काम नहीं है। स्वयं लाखों रुपया लेकर व्यासपीठ के ऊपर बैठते हैं। अब आप बताइए, जो व्यक्ति एक छोटे से धन की आसक्ति से मुक्त नहीं हुआ, समाज को दुनिया की आसक्ति से कैसे मुक्त करा पाएगा? ऐसे लोगों की कथा में हजारों बार भी यदि हम चले जाए फिर भी हृदय परिवर्तन नहीं हो सकता है। यद्यपि वे भागवत और गीता ही बोल रहे हैं, परंतु प्रभुपाद जी कहते हैं कि दूध में बहुत गुण होते हैं, परंतु यदि उस दूध को एक सर्प स्पर्श कर ले तो वह दूध जहर में बदल जाता है। ठीक उसी प्रकार यही भागवत और यही गीता है, परंतु बोलने वाला इस पर आचरण नहीं करता है तो सुनने वाले का इस पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए सुनना भी ऐसे भक्तों से चाहिए जो निष्काम है। आज आप देखो, आज के जो कथाकार होते हैं, तथा कथित कथाकार, बहुत सुंदर गाते हैं, सुंदर बजाते हैं, बहुत सुंदर कला भी होती है, हजारों लोग आते हैं और अपनी मुंडी भी हिलाते हैं, परंतु जीवन परिवर्तन एक का नहीं होता है। परंतु देख लीजिए प्रभुपाद जी के जीवन में यद्यपि कोई कला नहीं थी और इतना मधुर कंठ भी नहीं था और इतना धन भी नहीं था कि सब बजा सके, केवल एक जोड़ी करताल लेकर गए थे, परंतु लाखों लोगों का हृदय परिवर्तन कर दिया। जो लोग 2400 घंटे मांसाहार करते थे, नशा करते थे, ऐसे लोगों को ब्राह्मण बना दिया प्रभुपाद जी, शुद्ध भक्त बना दिया। और हमारे भारत वर्ष के लिए दुख की बात, शर्म की बात यह है कि प्रभुपाद जी की कृपा से विदेश में रहने वाले ब्राह्मण के पद से भी ऊपर उठ गए और विदेश के लोग, विदेश के भक्त आज भारतवासियों को दीक्षा दे रहे हैं। भारत जैसे संस्कृति देश में जन्म लेने के बाद भी हम भजन और भक्ति नहीं कर सकते, हमारा दुर्भाग्य है। क्यों? क्योंकि हमने ऐसे आचार्य की शरण ग्रहण नहीं की है। यदि हम शुद्ध आचार्य की शरण में जाएंगे जो निष्काम है, निश्चित हमारा हृदय परिवर्तन होगा। प्रहलाद महाराज का गुण, वे निष्काम थे। और अंत में नारद मुनि कहते हैं रहिता सुर, कहते हैं प्रहलाद महाराज असुर कुल के थे, असुर कुल के थे, परंतु उस असुरत्व से बिल्कुल रहित थे। असुर का अर्थ होता है, असु का अर्थ होता है इंद्रिया, और र का अर्थ होता है राती ददाती। जो 2400 घंटा अपनी इंद्रिय तृप्ति करने के लिए पड़ा रहता है उसे असुर कहा जाता है। 2400 घंटा इंद्र तृप्ति में फंसे रहने वाले लोगों के बीच में प्रहलाद महाराज रहते थे, फिर भी वे शुद्ध भक्ति करते थे। इस संसार में हम किसी को उपदेश करते हैं आप भक्ति कीजिए तो कहते हैं कि हम भक्ति कैसे करें, हमारे आजू बाजू में ऐसे लोग हैं कि हम भक्ति नहीं कर सकते। अरे आपके आजू बाजू में हृणा कश्यप जैसे तो लोग नहीं है? हृणा कश्यप से तो अच्छे हैं। ये तो हमारा बहाना है, भक्ति नहीं करने का एक्सक्यूज है, बहाना है, हम भक्ति करना नहीं चाहते हैं इसलिए कहते हैं। नहीं तो प्रकट दृष्टांत है, प्रहलाद महाराज असुर कुल के बीच में रहकर भजन करते थे। भक्ति सब लोग कर सकते हैं, भक्ति स्वतंत्र धर्म है, बंधी हुई नहीं। केवल प्रहलाद नहीं, इतिहास खोलकर देख लीजिए, रावण का भाई विभीषण लंका में रहता था जहां पर केवल निशाचर का वास था। निशाचर का अर्थ जानते हैं? निशाचर का अर्थ होता है असुर। अच्छा, असुर को निशाचर क्यों कहा जाता है? निशा का अर्थ होता है अंधकार, रात, और चर का अर्थ होता है विचरण करना। जो रात को विचरण करे उसे असुर कहा जाता है। और आज भी जो 12-1 बजे के बाद जितने भी रास्ते में दिखाई देते हैं, मैं नहीं कहता हूं भाई, रामायण में कहते हैं कि वे निशाचर है। जो असुर होते हैं उसे रात पसंद होती है और जो साधु होते हैं उसे दिन पसंद होता है। तो तो निशाचरों के बीच में विभीषण रहते थे। जब हनुमान जी मिले तो विभीषण ने अपनी कथा बताई कि हे हनुमान जी महाराज, मेरी रहनी कैसी है यह सुनो। मैं तो यहाँ पर वैसे रहता हूँ जैसे 32 दांत के बीच में जीव रहती है। आप कभी विचार करो इस बात के ऊपर कि ये जीवा जो है हमारी 32 दांत के बीच में रहती है। यदि जीवा थोड़ी भी फिसल जाए तो दांत के बीच में कच करके आ जाती है। जैसे 32 चाकू के चक्कू के बीच में इस जीवा को रखा जाए, थोड़ी भी 19-20, जैसे मैं अभी बोल रहा हूं तो उसमें भी जीवा का ध्यान बहुत है। यदि बोलने में थोड़ी भी आगे पीछे हो गई, कभी कभार होता है, सबको अनुभव होगा। जैसे 32 दांतों के बीच में जीव की हालत होती है, हनुमान जी वैसे इस असुरों के बीच में मेरी हालत है। लेकिन फिर भी विभीषण जी भगवान श्री राम की भक्ति करते थे। ऐसा नहीं कि असुरों के बीच में रह रहा हूं तो क्या भक्ति करो, नहीं। उनके घर पर तुलसी था, ब्रह्म मुहूर्त में जग जाते थे। कुछ लोग ये भी बहाना देते हैं कि हम ऐसे घर में रहते हैं, ऐसा वातावरण होता है, जल्दी नहीं उठ सकते हैं। हनुमान जी जब लंका में गए, सबसे पहले रावण के महल में गए, जाकर देखा सीता जी नहीं मिली। तब रावण के महल से जब वे ऊपर आए उड़ते उड़ते, तो उन्होंने बिल्कुल लंका के बीचों बीच ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 3:30 बजे एक घर में रोशनी जल रही थी, बाकी सब लोग सो रहे थे। एक जन के घर पर रोशनी जल रही थी। हनुमान जी थोड़े नीचे आए तो उनके प्रांगण में तुलसी का पौधा देखा। तब हनुमान जी विचलित हो गए कि असुरों के बीच में तुलसी, इसका अर्थ यहां पर कोई भगवान का भक्त रह रहा है। और हनुमान जी जब और करीब आए तो पता चला कि ब्रह्म मुहूर्त में एक व्यक्ति स्नान करके तुलसी की प्रदक्षिणा कर रहा है। हनुमान जी ने सोचा कि निश्चित ही भगवान का भक्त है, कैसे भी करके इनके साथ इंट्रोडक्शन करूंगा। सत्य है, यदि हम चाहे तो हम ब्रह्म मुहूर्त में जग सकते हैं, परंतु हमें जगना नहीं। वास्तव में ये ब्रह्म मुहूर्त भगवान की देन है, प्रकृति के द्वारा हम सब जीवों को दी गई देन है, परंतु हम उसे फोकट में गवा देते हैं। भगवान का स्मरण करने के लिए, भजन करने के लिए, नाम लेने के लिए, पूजा करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त उपयुक्त समय है, परंतु जिस समय में जो करना चाहिए वह हम नहीं करते हैं, सोते रहते हैं। ऐसे ही सोने वाले जीव को चैतन्य महाप्रभु जगाते हैं, जीव जागो गोरा चांद बोले। तो असुर, प्रहलाद महाराज असुर कुल में थे, परंतु फिर भी रहिता, असुरत्व से बिल्कुल रहित थे। आगे नारद मुनि कहते हैं, यस्मिन् महद्गुणाराजन् गृह्यन्ते कविभिर्मुहुः ते दुनापि धीयन्ते यथा भगवतीश्वरे। हे राजन, अस्मिन् महद्गुणा, जिस प्रकार जिस प्रहलाद के महान विद्वानों के द्वारा बार बार गायन किए गए गुण, न तेदु नाभिधीयन्ते यथा भगवत ईश्वरे। प्रहलाद महाराज के द्वारा विद्वानों के बार बार गुण गाए गए हैं। विद्वान लोग अपनी सभा में बार बार प्रहलाद महाराज के गुण गाते हैं, और आज भी प्रहलाद महाराज हो गए, बहुत वर्ष बीत गए, परंतु बहुत बहुत वर्ष बीतने के बाद भी नारद मुनि कहते हैं कि आज भी प्रहलाद का गुण छिपा हुआ नहीं है, प्रकट है। कैसे? दृष्टांत देते हैं, जैसे भगवान कृष्ण का, यथा भगवत ईश्वर है। जैसे भगवान कहीं छिपे हुए नहीं है, जैसे भगवान के गुण छिपे नहीं है, वैसे ही प्रहलाद के गुण छिपे हुए नहीं है। जैसे भगवान सभी लोगों के हृदय में परमात्मा के रूप में, वैसे प्रहलाद महाराज के गुण सभी जगह पर है। जैसे भगवान के गुण है, वैसे ही प्रहलाद के गुण। सत्य है, प्रहलाद महाराज भगवान के शुद्ध भक्त हैं, और शुद्ध भक्त को अपना गुण प्रकट करने के लिए एडवर्टाइजमेंट की जरूरत नहीं होती है। बताइए, प्रहलाद महाराज की एडवर्टाइजमेंट या होर्डिंग या बोर्डिंग या पैम्पलेट किसने छापे? किसी ने नहीं। शुद्ध भक्त के जो गुण होते हैं, शुद्ध भक्त का जो यश होता है, वे ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। एक बार चैतन्य महाप्रभु ने राय रामानंद को पूछा कि हे राय, प्रभु कहे कीर्ति मध्य कौन बड़ कीर्ति। चैतन्य महाप्रभु जो साक्षात ईश्वर थे, भगवान थे, अपने भक्त को पूछ रहे हैं राय रामानंद को कि संसार में बहुत सारी कीर्ति है, यश है, परंतु सभी कीर्तियों में सबसे बड़ी कीर्ति कौन सी है। हमारी दृष्टि से तो सबसे बड़ी कीर्ति डॉक्टर बन जाना है। हमारा लड़का डॉक्टर बन गया, जैसे भगवान बन गया हो। सबसे बड़ी कीर्ति कौन सी, कुछ लोग सोचते हैं वकील बन जाना सबसे बड़ी कीर्ति है, कुछ लोग सोचते हैं डॉक्टर बन जाना सबसे बड़ी कीर्ति है, कुछ लोग सोचते हैं करोड़पति बन जाना सबसे बड़ी कीर्ति है। परंतु भक्तों, यह सब कीर्ति कब तक टिकती है? जब तक यह शरीर है तब तक यह कीर्ति टिकती है। कितना भी बड़ा डॉक्टर हो, यदि यह शरीर छोड़ गया तो दूसरे जन्म में कुत्ता बनेगा, निश्चित नहीं है वह डॉक्टर ही बनेगा। कहां गई कीर्ति? एक तो आधा जीवन डॉक्टरी की डिग्री लेने में चला गया और मिला 30-40-50 साल डॉक्टरी करने के लिए, 50 साल के बाद मर गया, मरने के बाद गधा बना, कुत्ता बना, डॉक्टर बना, कोई भरोसा नहीं। कहते हैं सबसे बड़ी कीर्ति कौन सी है? तब राय रामानंद उत्तर देते हैं, राय कहे कृष्ण भक्त बलिया। कीर्ति तो बहुत सारी है, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, परंतु गले में कंठी और भाल में तिलक धारण कर लेना और विष्णु का भक्त बन जाना, यह है सबसे बड़ी कीर्ति, सबसे बड़ी। इतिहास के पन्ने खोलकर देख लीजिए, जितने जितने भक्त हो गए उनकी कीर्ति आज भी अमर है। इसलिए हमारे सौराष्ट्र में कहते हैं, नाम रहंता ठाकरा नाना नहीं रहंत, कीर्ति हुंदा कोटड़ा ई तो पाड़ा नहीं पड़ंत। कहते हैं जिन्होंने भक्ति की उनकी कीर्ति का कभी नाश नहीं हुआ। इस देह रूपी दीवार गिर गई परंतु उसकी कीर्ति कभी नष्ट नहीं हुई, अजर अमर हुई। आप आज देखिए, आप जूनागढ़ में अनेक अनेक राजा महाराजा आए और राज करके चले गए, परंतु याद आज यदि किसी को पूछा जाए जूनागढ़ किसका है तो एक ही उत्तर मिलेगा, नरसिंह मेहता का जूनागढ़। मारवाड़ में अनेक राणा आए और अनेक राणा राज करके चले गए, आज यदि पूछा जाए मारवाड़ किसका है तो एक ही उत्तर होगा, मीराबाई का मारवाड़। पोरबंदर में अनेक राजा आए और राज करके चले गए, पूछा जाए पोरबंदर किसका, एक ही उत्तर है, सुदामा का पोरबंदर। यह है भक्त की कीर्ति। आज भी सबकी जबान पर, प्रहलाद महाराज को बीते करोड़ों वर्ष बीत गए लेकिन आज भी हजारों लोग बैठकर उनकी कीर्ति सुन रहे हैं और सुनकर आनंद ले रहे हैं। ये भक्त की कीर्ति, भक्त की कीर्ति का कभी नाश नहीं होता है। एक बार जो विष्णु का हो गया उनकी कीर्ति तीनों भुवन में फैल जाती है, देवता भी उनकी सराहना करते हैं। वैसे ही प्रहलाद महाराज के गुण अदृश्य नहीं थे, दृश्य, सब लोग उनके गुणों के बारे में जानते थे, जैसे भगवान। भगवान की भक्ति करने से भगवान की जितनी प्रशंसा होती है उतनी ही उनके भक्त की होती है। यथा भगवत ईश्वरे, जैसे भगवान की कीर्ति फैलती है वैसे उनके भक्त की कीर्ति फैलती है। नारद मुनि आगे कहते हैं, यम साधु गाथा सदसी रिपवोपी सुरानिप प्रतिमानं प्रकुर्वन्ति किमुताने भवादृशा। हेनरी, हे राजन, साधु गाथा सदसी सुरा अपियम, कहते हैं कि बड़े बड़े सुरा देवताओं के शत्रु, देवताओं के दुश्मन की सभा में, अर्थात असुरों की सभा में भी जब किसी भक्त की गाथा गाई जाती है तो उसमें प्रहलाद का नाम मुख्य होता है। और प्रति मानव प्रकुरवंती, देवताओं के समाज में या असुरों के समाज में जब किसी भक्त की उपमा देनी होती है तो प्रहलाद महाराज का नाम लेते हैं कि भक्त हो तो प्रहलाद जैसा होता है ना। हमारे फैमिली में, कुटुंब में जो कोई बहुत सुंदर लड़का है तो किसी भी सुंदर लड़के की उपमा देनी हो तो उस लड़के का नाम लेकर कहते हैं कि इसके जितना सुंदर है। ठीक उसी प्रकार देवताओं की सभा में, असुरों की सभा में जब किसी भक्त को नापना होता है, तोलना होता है, तब कहते हैं प्रहलाद जैसा भक्त था। नहीं, प्रहलाद जैसा तो कोई नहीं हो सकता है। अर्थात देव समाज और असुर समाज में प्रहलाद महाराज की कीर्ति अमर थी। कहते हैं कि देव समाज, असुर समाज में प्रहलाद महाराज की कीर्ति है तो किमु ताने भवादृश्या, तो आप जैसे लोगों की तो बात ही क्या की जाए। युधिष्ठिर महाराज को नारद मुनि कह रहे हैं तो फिर आप जैसे लोगों के लिए क्या कहना, भवदृश्या किम, प्रश्न उठाते हैं। आप तो उनकी कीर्ति गाते ही रहते हैं। गुणेरलमं संख्ये महात्म्यं तस्य सूचते वासुदेवे भगवती यस्ने सर्गिकीरति। प्रहलाद महाराज के बहुत बहुत गुण गिनाए। अब उसका अंतिम संवरण करते हुए कहते हैं कि गुणेर असंख्य, यद्यपि प्रहलाद महाराज में असंख्य गुण है इसलिए अलम, इसके गुणों को गिनने की आवश्यकता नहीं है। अब कितना गुणों, कितना गिनोगे? प्रहलाद महाराज में उतने गुण हैं कि वे आप गिन नहीं सकते हो। तस्य सूच्यते न, उसे कोई सूचित नहीं कर सकता है। परंतु इतना ही समझिए, प्रहलाद महाराज के गुणों का अंत करते हुए कहते हैं इतना ही समझिए, वासुदेवे भगवती यस्य नैसर्गिकीं रति, वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण वासुदेव में प्रहलाद की नैसर्गिकी अर्थात स्वाभाविक रति, मति और भक्ति थी। स्वाभाविक भक्ति थी। प्रहलाद महाराज को बाहर से भक्ति नहीं डाली गई थी, जन्मजात भगवान के प्रति रति थी। स्वाभाविक रति का अर्थ होता है जैसे कस्तूरी होती है, कस्तूरी मृग की नाभि से कस्तूरी निकलती है, उसमें बहुत सुगंध होती है। जैसे कस्तूरी में सुगंध स्वाभाविक होती है, वे सुगंध बाहर से नहीं डाली जाती है। कस्तूरी का स्वभाव ही होता है सुगंध फैलाना। जैसे आग में, अग्नि में दाहक शक्ति स्वाभाविक होती है, जब अग्नि लगती है तो उससे जलन होती ही है, ऐसा नहीं है कि जलन बाहर से डालनी पड़ती है। जैसे कस्तूरी में सुगंध स्वाभाविक होती है, अग्नि में जलन शक्ति स्वाभाविक होती है, वैसे ही प्रहलाद महाराज में कृष्ण के प्रति प्रेम स्वाभाविक था, बाहर से नहीं डालना पड़ा। आगे यह कथा आएगी जब प्रहलाद महाराज अपने पिताजी को उत्तर देंगे कि हे पिताजी, भगवान विष्णु की 9 प्रकार की भक्ति करना ही सर्वश्रेष्ठ है। तब हिरण्यकश्यप बहुत डांटेंगे और शंड और अमर उनके गुरु को बुलाएंगे कि तुम्हारा बाप क्या बोल रहा है, मैं भगवान यहां मैं बैठा हूं और ये विष्णु का नाम लेने की कह रहा है, किसने सिखाया, तुम दोनों को मार डालूंगा। तब शंड और अमर कहते हैं कि न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम। ये सरकार हिरण्यकश्यप जी महाराज, न मत प्रणीतम, प्रहलाद को हमने नहीं सिखाया, हमने कभी नहीं कहा कि विष्णु की भक्ति करनी चाहिए, और न पर प्रणीतम इस्कोन वाले भी कोई यहां पर नहीं आए, कोई भक्त भी इसे आकर नहीं सिखाया, तो बताओ किसने सिखाया इसको। तब शंड और अमर कहते थे नैसर्गिकी मति यस्य राजन, हे राजन, ये जन्मजात स्वाभाविक मां के गर्भ से यह सीख कर आया है, नैसर्गिकी रति है, सत्य है। प्रहलाद महाराज की भगवान में मति स्वाभाविक थी और इसीलिए प्रहलाद महाराज में की भगवान में शुद्ध भक्ति थी। इसलिए अब प्रहलाद महाराज की भक्ति का लक्षण बता रहे हैं। जब किसी व्यक्ति में भक्ति आ जाती है, शुद्ध भक्ति प्रकट होती है, तब उसके कुछ लक्षण बदल जाते हैं। जैसे गीता में भगवान कृष्ण को अर्जुन पूछते हैं कि हे कृष्ण, आप मुझे यह बताइए कि शुद्ध भक्त कैसे चलते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं। किम आसीत ब्रजेत किम स्थिति प्रज्ञस्य का भाषा समाधि स्थस्य केशव, उसी का उत्तर यहां पर आ रहा है। प्रहलाद महाराज का आचरण कैसा था? अब तक तो प्रहलाद महाराज के गुण हमने सुने, अब प्रहलाद महाराज का आचरण नारद मुनि कह रहे हैं। न्यस्त क्रीड नको बालो जड़वत मनस्तया कृष्ण ग्रह ग्रहित आत्मा न वेद जगदी त्रिशम। कहते क्रीड नको न्यस्त, प्रहलाद महाराज यद्यपि 5 साल के बालक थे परंतु क्रीड नको खेलने में न्यस्त कभी भी आसक्त नहीं रहते थे। 5 साल का बालक खेले बिना और कुछ नहीं करता है। देखें माता पिता बालक खेलते हैं, इतना खेलने में मशगूल रहते हैं, भोजन का भी ख्याल नहीं होता है। माता पिता जबरदस्ती बुलाते हैं, डांटते हैं, तब जाकर वे भोजन करते हैं। 5 साल का बालक की बुद्धि केवल खेलने कूदने में होती है, परंतु न्यस्त क्रीड नको नारद मुनि कहते हैं प्रहलाद महाराज खेलने कूदने में जरा भी ध्यान नहीं देते। अब तो आजकल के बालक तो बिगड़े हैं परंतु बूढ़े भी बिगड़े हैं। बालक तो खेलते हैं, चलो वो खेले, परंतु बूढ़े भी ट्रेन में गेम लेकर खड़े रहते हैं, वीडियो गेम खेलते हैं, कसिनो में जाकर खेलते हैं, सब लोग खेलते हैं। वास्तव में ये खेलना भी एक पाप है। शास्त्र में कहा गया है कि भगवान से विमुख, कृष्ण कथा और कृष्ण नाम से विमुख एक क्षण भी बिताना उसे पाप माना जाता है, और हम खेलने में केवल हमारा समय बर्बाद कर रहे हैं। एक बार कुछ लोग ट्रेन में ताश खेल रहे थे तो मैंने जस्ट कह दिया, बहुत उत्साह था प्रचार करने का शुरू शुरू में, मैंने कह दिया ये ताश क्यों खेल रहे हो आप, पता नहीं ये जुआ है, पाप लगेगा। तब उन लोगों ने कहा नहीं नहीं, हम पैसे से नहीं खेल रहे हैं, हम केवल टाइम पास कर रहे हैं। मन में बहुत दुख हुआ, वे लोग टाइम पास कर रहे थे परंतु वे मूर्ख नहीं जानते हैं कि हम क्या टाइम को पास करेंगे, टाइम हमको पास कर रहा है। हम क्या टाइम को पास करेंगे, यदि आप न भी चाहो फिर भी टाइम कभी रुकने वाला नहीं है। समय का चक्र जो है वह चल रहा है, और प्रति घंटे प्रति क्षण प्रति सेकेंड सभी व्यक्ति को काट रहा है, मार रहा है। लेकिन हम लोग हमारे काम में इतने मदमस्त हैं, इतने व्यस्त हैं कि इस मरे हुए इस काटते हुए चक्र को हम देख नहीं रहे हैं। जैसे आप सर्प को देखा है, अजगर, अजगर जब किसी को खाता है तो एक साथ नहीं खा जाता है, वह धीरे 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 निगलता है। वैसे यह काल सर्प के समान है, एक साथ गप करके नहीं खाता है, धीरे धीरे प्रतिदिन प्रति घंटे प्रति सेकेंड हमें यह काल खा रहा है। हम प्रति सेकेंड मृत्यु के ओर जा रहे हैं और हम टाइम को पास करने में बैठे हैं, समय पास कर रहे हैं। अस्त में लोग अंधे हैं, इस बात को जान नहीं सकते हैं। भागवत में एक नहीं तीन तीन बार यह दृष्टांत दिया जाता है चूहे और सांप का। एक चूहा महाशय था, चूहे को आप जानते होंगे, जब वे अपना घर बनाते हैं तो बहुत प्लान लगाते हैं, खेत के इस कोने से अपना दर बिल बनाते हैं, उस कोने से बाहर निकलते हैं, और उसमें भी 3-4 रास्ते दरवाजे रखते हैं ताकि सांप यदि आ गया तो दूसरे बिल से निकले। कहते मूषिक महाशय अपना प्लान बनाने में रहता है कि यहां से फ्लैट बनाऊंगा, ऐसा फर्नीचर कराऊंगा जैसे हम लोग करते हैं, ये गाड़ी लूंगा, ऐसा बंगला, ऐसा कलर कराऊंगा, ये टीवी लूंगा, ये प्लान। तब तक तो सांप आता है और गप करके उस चूहे को खा जाता है, सारी धन संपत्ति सब कुछ इधर ही रह जाता है और वह सबको छोड़कर चला जाता है। ऐसी स्थिति हमारी है, हम लोग 1 के 2, 2 के 4 और 4 के 8 करने में पड़े हैं, क्या साथ में आएगा बताइए। जीने के लिए 3 टाइम रोटी और सब्जी चाहिए, यदि आपके पास करोड़ों रुपया आ गया तो 1 रोटी ज्यादा नहीं खा सकते हैं। उल्टा जिसके पास ज्यादा धन है वे ज्यादा दुखी हैं, क्योंकि धन सामने है, स्वीट है, गुलाब जामुन है, परंतु डायबिटीज है, उससे ज्यादा दुखी और कोई नहीं हो सकता है, सब कुछ होते हुए भी नहीं खा सकता है। सब लोग अपने प्लान में लगे हैं, ये कमाएंगे, वो करेंगे, वहां जाएंगे, ये करेंगे, परंतु मूर्ख लोग देख नहीं सकते हैं कि यह काल सर्प जो है सबको खा रहा है, निगल रहा है। और कुछ लोगों को तो आधा निगल चुका है, जिसके 40-50 हो गए वो तो आधा अंदर मुंह के अंदर है, फिर भी मदमस्त है, घूम रहे हैं स्वतंत्र होकर। कुछ तो 80% जिसके सफेद हो गए हैं वे तो 80% अंदर चले गए, फिर भी मदमस्त है। तो वास्तव में टाइम हमें पास नहीं, हम टाइम को पास नहीं कर रहे हैं, टाइम हमें पास कर रहा है। आज की घड़ी, आज का दिन और आज की सेकंड जीवन में कभी फिर से नहीं आने वाली है। इसलिए भक्तों, जो भी समय मिले ज्यादा से ज्यादा उस समय का इस्तेमाल करते हुए, सदुपयोग करते हुए भगवान का नाम और भगवान की कथा सुन लेनी चाहिए। न्यस्त कीड़न को वीडियो गेम नहीं खेलना चाहिए, मोबाइल में टाइम पास नहीं करना चाहिए। हमारी प्रत्येक घड़ी भगवान की भक्ति में लगानी चाहिए, नहीं तो ये सारा हिसाब किताब होगा यमराज के दरबार में। डंडे मार मार कर कहेंगे कि इतना सुंदर मनुष्य जीवन दिया, इतना सुंदर समय दिया, इसको उनके भक्त कथा करने के लिए आए थे, फिर भी नहीं सुधरे। बहुत मारेंगे, बहुत पीटेंगे, तो हमें इसे बचना चाहिए। प्रहलाद महाराज खेलने में थोड़ा भी ध्यान नहीं। न्यस्त क्रीड़े नको बालो जड़वत तन मनस्तया, खेलने में ध्यान नहीं था। कुछ लोग उसे खेलने के लिए बुलाते भी थे तो प्रहलाद महाराज जड़ की तरह बैठे रहते, जैसे बाहर से कोई जड़ पेड़ की समान बैठे रहते थे। नारद मुनि कहते थे कि प्रहलाद महाराज जड़ की समान बैठते थे तो वैसा ही लगता था जैसे इसको कोई ग्रह लग गया है। पता ना, किसी को शनि नड़ता है, किसी को सोम मंगल सूर्य ग्रह बहुत लोगों को नड़ते हैं, परंतु उसे नहीं पता है कि हम ही समाज को नड़ रहे हैं। जैसे कोई ग्रह किसी को पकड़ लिया हो वैसे प्रहलाद महाराज जड़वत बैठे रहते थे। मान लीजिए पूछा होगा युधिष्ठिर महाराज ने कौन सा ग्रह पकड़ा था, तब नारद मुनि कहते हैं कृष्ण ग्रह ग्रहित आत्मा, कृष्ण नामक ग्रह उसे पकड़ लिया था, भगवान श्री कृष्ण का काला ग्रह पकड़ लिया था। भगवान की भक्ति ग्रह के समान है, यह सत्य है। यदि किसी व्यक्ति को यह काला ग्रह कृष्ण का ग्रह लग गया तो सबसे पहले वे सभी ग्रह से मुक्त हो जाते हैं। और रूप गोस्वामी अपनी पद्यावली में बहुत सुंदर कहते हैं कि यदि यह काले ग्रह से बचना चाहते हो, यदि आप चाहते हो कि अपने स्वजन पत्नी और पुत्रों के साथ शांति से अपना जीवन बिताओ, यदि अपनी पत्नी से प्रेम करना चाहते हो, पुत्र से प्रेम करना चाहते हो, समाज में आसक्ति है तो भूल से भी वृंदावन में मत जाना, नहीं तो ये सारी आसक्ति छूट जाएगी। और वृंदावन में भी यदि चले गए तो यमुना के किनारे मत जाना, और यदि यमुना के किनारे भी चले गए तो भूल से भी कृष्ण के सामने मत देखना। यदि आपने कृष्ण के सामने देख लिया तो फिर अपनी पत्नी से पुत्र से और संसार की आसक्ति से मुक्त हो जाओगे और कृष्ण नाम का ग्रह तुम्हें पकड़ लेगा। कृष्ण सर्वाति सुंदर है, मधुर मधुराति मधुर है, मधुरम मधुरम मधुरस्य विभो, भगवान श्री कृष्ण का अखिलम सब कुछ मधुर है। वल्लभाचार्य जी ने बहुत सुंदर लिखा है, आंख नयनम मधुरम वदनम मधुरम, क्या बताएं इस मधुराती मधुर का सब कुछ मधुर है। भगवान मधुर है और उसे देखकर सब लोग आसक्त हो जाते हैं। प्रहलाद महाराज भी जड़वत, जैसे उसे ग्रह लग गया हो वैसे प्रहलाद महाराज थे। मुझे एक घटना याद आ रही है, केवल प्रहलाद में ही नहीं, आज भी यदि कोई भक्ति करने लगे तो वैसा ही लगता है कि इसे ग्रह लग गया है। एक बार हमारे श्री राधा गिरधारी मंदिर में हमारे एक मित्र है पराग प्रभु, बोरीवली में रहते हैं, आज तो राजकोट में है, तो वे हमारे साथ कुछ दिन मंगला आरती में आते थे। तो मंगला आरती करने के बाद इस्कॉन में सब लोग माला करने के लिए बैठते हैं, तो पराग प्रभु बैठे माला करने के लिए और बाजू में सहदेव संघ प्रभु जो आज टीवी में भी आते हैं, वे दोनों माला जप करने के लिए बैठे हैं। दोनों अपनी आंख बंद कर दिए और माला जप करने में सबकी अलग अलग स्टाइल होती है। तो ये जो पराग प्रभु थे वे दो घंटा तक हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे ऐसे मुंह आगे आगे करते, और बाजू में जो सहदेव संघ प्रभु बैठे थे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे, ये आगे आगे ये हा हा कर रहा है, वो नाना कर रहे हैं। नया व्यक्ति कोई आया तो उसे ऐसे ही लगा कि ये दोनों पागल हो गए, क्या हो गया इसे। लगता है कोई ग्रह पकड़ लिया है, वास्तव में और कोई ग्रह नहीं, इसे कृष्ण ग्रह पकड़ लिया है। कृष्ण ग्रह ग्रहित आत्मा, कृष्ण के ग्रह से ग्रहित थे। और अंत में कहते हैं नवेद जगदीतिशम, नवेद जगत इत्रिशम। हमारे मन में प्रश्न होता है कि प्रहलाद महाराज में इतना सारा गुण, ऐसी भक्ति कैसे? तो उसका एक कारण यह है कि नवेद जगत इत्रिशम, प्रहलाद महाराज जगत के बारे में कुछ नहीं जानते थे, जगत के बारे में थोड़ा भी ज्ञान रखते नहीं थे और ज्ञान प्राप्त करने में थोड़ा भी इंटरेस्ट भी नहीं था। कुछ लोग कहने के लिए आए कि प्रहलाद वहां पाकिस्तान में ये हो रहा है, प्रहलाद महाराज कहते जाओ जाओ मुझे कुछ नहीं सुनना। नवे जगत ईदृशम, जगत के बारे में थोड़ा भी ज्ञान नहीं रखते थे, इसीलिए वे भगवान के बारे में पूर्ण ज्ञान था। यदि हमें भी कृष्ण के बारे में जानना है, कृष्ण का भक्त बनना है, तो सबसे पहले जगत को भूलना होगा। जब तक जगत को नहीं भूलेंगे तब तक कृष्ण को याद नहीं रख सकते हैं। परंतु दुर्भाग्य की बात है कि रोज सुबह उठकर सबसे पहला काम कृष्ण को भूलना और जगत को देखना होता है। सबसे पहले सुबह उठकर ही न्यूज़पेपर खोल देते हैं जिसमें कचरे के अलावा और कुछ नहीं है, केवल कचरा। आज वहां पर चोरी हुई, आज आतंकवादियों के द्वारा 10 मर गए, आज ये किसी लड़की को लेकर भाग गया, आज इसने इसको गाली दे दी, बताइए इसमें कौन सी अच्छी बात है? रोज सुबह उठकर गीता और भागवत के छोड़कर हम कलयुग का यह वेद न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं जिसमें कचरे के अलावा और कुछ नहीं। वास्तव में यदि हमें कृष्ण को याद रखना है, जगत को भूलना होगा। केवल पेपर ही नहीं, फिर टीवी शुरू करते हैं जगत को देखने के लिए, किस प्रकार नंगा नाच हो रहा है और अपनी आंख और कान से जगत को अंदर भर रहे हैं। जब तक जगत को अंदर भरते रहेंगे तब तक कृष्ण अंदर नहीं आएंगे। जगत को भरने की बात तो रही, सबसे पहले जो अंदर हजारों जन्मों से जगत उतरा है उसे बाहर निकालना होगा। इसलिए यह सत्य बात है, जिसके घर पर टीवी है और वह सोचते हैं कि हम भगवान को प्राप्त करेंगे, भूल जाए। क्योंकि जब तक जगत को देखना बंद नहीं करेंगे, जब तक जगत को नहीं भूलेंगे तब तक कृष्ण को याद नहीं रख सकते। टीवी कोई खराब चीज नहीं है, परंतु उसका सदुपयोग होना चाहिए। उसमें भी हम भगवान के दृश्य देख सकते हैं, रामलीला, कृष्ण लीला, महाभारत देख सकते हैं, परंतु हम उसके अलावा सब कुछ देखते हैं। न वेज जगत ईदृशम, जगत को भूलना होगा, तब जाकर हम कृष्ण को हमारे हृदय में, मन में, इंद्रियों में बसा पाएंगे। प्रहलाद महाराज जगत के बारे में थोड़ा भी ध्यान नहीं था। आगे कहते हैं आसीन पर्य टनन नश्नन शयान प्रपिबन ब्रुवन नानु संद धत्त येतानी गोविंद पररंभित। कहते गोविंद परिरंभित, भगवान गोविंद के द्वारा अपने को आलिंगित समझते थे। प्रहलाद महाराज 24 घंटा यही समझते थे कि गोविंद, कृष्ण ने मुझे आलिंगन किया है। और इस प्रकार समझते हुए आसीन बैठते हुए, पर्यटन चलते फिरते, नश्नन खाते, शयान सोते, प्रपिबन पीते और ब्रुवन बोलते हुए, यह सब करते हुए प्रहलाद महाराज कुछ भी ध्यान नहीं रखते थे। प्रहलाद महाराज ने कब खा लिया, कब पी लिया, कब किसी से बात कर लिया, कुछ पता नहीं था। केवल मन में यही सोचते थे कि गोविंद ने, कृष्ण ने मुझे आलिंगन किया है। और संसार के यह सभी कार्यों में ध्यान नहीं देते थे, फिर भी वह कार्य एकदम परफेक्ट होते थे। कहते हैं गुरुकुल में कई सारे लड़के थे, परंतु प्रहलाद का नंबर 1 आता था। क्यों? क्योंकि जो लोग भगवान की शरण में होते हैं उनका ध्यान भगवान रखते हैं। जो भगवान को समर्पित हो चुके हैं फिर उनका ध्यान भगवान के हाथ में है, फिर हमें नहीं देखना है। अब सौंप दिया सब भार भगवान तुम्हारे चरणों में, जब यह सारा भार भगवान के चरणों में सौंप दिया तो सारी जिम्मेदारी भगवान की है, हमें केवल भगवान का भजन करना चाहिए। कुछ लोग भगवान का भजन करते हैं परंतु चिंता करते हैं कि हम कैसे खाएंगे, कैसे पिएंगे, कपड़ा कैसे पहनेंगे। परंतु शौनक जी बहुत सुंदर कहते हैं कि भोजन अच्छा दने चिंता वृथा कुरुवंती वैष्णवा। हे वैष्णवो, ये भोजन की खाने पीने की कपड़े पहनने की रहने की चिंता कर रहे हो। अरे हम जिसका भजन कर रहे हैं उसका नाम विश्वंभर है। विश्वंभर का अर्थ होता है विश्व का भरण पोषण करने वाला। जो भगवान पूरे विश्व का भरण पोषण करते हैं, हम भजन करने वाले का भरण पोषण नहीं करेंगे? अवश्य करेंगे, परंतु विश्वास होना चाहिए। प्रहलाद महाराज संसारिक काम में थोड़ा भी ध्यान नहीं रखते थे, फिर भी सब काम ठीक से होता था, क्योंकि वे काम भगवान का। प्रहलाद महाराज तो बहुत पुरानी बात है, कल की बात। नरसिंह मेहता कहा जाता है 52 times भगवान ने उसे दर्शन दिया और उनके काम करके चले गए। क्यों? क्योंकि भगवान के चरणों में थे, भगवान के भक्त थे। कुछ लोग कहेंगे हमारे घर तो भगवान कभी नहीं आए, हम भी उनकी भक्ति करते हैं, परंतु हमारी भक्ति भी नरसिंह मेहता जैसी नहीं है। हम शुद्ध भक्त नहीं है, हम पूर्ण शरणागत नहीं है। यदि पूर्ण शरणागत हो गए तो हमें भी भगवान दर्शन दे सकते हैं। तो भगवान सभी प्रकार से प्रहलाद महाराज को मदद करते थे। क्वचित रुदति वैकुंठ चिंता शबल चेतन, क्वचित हसति तत्चिंता अहलाद उद्गायति क्वचित। कहते हैं वैकुंठ भगवान, भगवान का एक नाम है वैकुंठ, भगवान का धाम भी है और उनका नाम भी है। कहते वैकुंठ चिंता शबल चेतन क्वचित रुदति। कहते भगवान श्री हरि के चिंतन में लीन चित वाले प्रहलाद कभी कभी रोने लगते थे। वैसे ही नॉर्मल चल रहे हैं सबके साथ, चलते चलते जोर जोर से रोने लगते थे। क्वचित रुदति। अब संसार के लोग, उनके साथ जितने भी मित्र थे, वो सोच में पड़ जाते ये क्यों रोने लगा, हमने तो मारा नहीं, कुछ बोला नहीं, वैसे ही क्यों रोने लगा। परंतु वे क्या जाने, प्रहलाद महाराज अंदर से बिल्कुल भगवान की लीला में मग्न थे, इसलिए कभी रोते थे। होता है भक्त जन को जो कोई प्रेमा भक्ति में पहुंच गया है, फिर वे भगवान के विरह को देखकर, भगवान के विरह को समझकर रोने लगते हैं। क्वचित हंसती, कभी कभी चलते चलते जोर जोर से हंसने लगते थे। अलाद उद्गायती क्वचित, और कभी कभी खुश होकर प्रसन्न होकर गाने लगते थे। ये सब इसलिए होता था क्योंकि प्रहलाद महाराज स्मरण भक्ति करते थे। प्रहलाद महाराज के स्मरण में नित्य भगवान की लीला चलती रहती थी। आचार्य गण कहते हैं कि प्रहलाद क्यों हंसते थे, अंदर से लीला शुरू होती थी, परंतु कभी कभी अंदर की बात बाहर प्रकट हो जाती थी। अंदर प्रहलाद महाराज के मन में लीला चल रही है कि भगवान श्री कृष्ण गोकुल में बहुत छोटे ग्वाल बाल है और किसी के घर पर चोरी कर रहे हैं, और प्रहलाद महाराज कभी साक्ष्य भाव में भगवान के साथ वहां खड़े रहते और भगवान श्री कृष्ण चोरी करते मक्खन चुराते, तब प्रहलाद महाराज को कहते हैं किसी को कहना मत। प्रहलाद महाराज को यही लगता है कि जो पूरे ब्रह्मांड का भरण पोषण कर रहे हैं उसे किसी के घर पर चोरी करने की आवश्यकता है, इतना सोचकर वे हंसने लगते थे। जैसे भक्ति सामर सिंधु में वर्णन है रूप गोस्वामी, हमारे आचार्य भी इस ऐसी स्थिति में थे। हमारे गौड़ी परंपरा में 6 गोस्वामी हो गए, जिसमें रूप गोस्वामी सबसे मुख्य थे। वे भी जब ध्यान में बैठते हैं उनके मन में भी भगवान की लीला का स्मरण होता है। एक दिन की बात, उनके मन में भगवान की लीला स्मरण हो रही थी। कौन सी लीला थी? भगवान श्री कृष्ण पेड़ की डाली के ऊपर बैठे थे और श्रीमती राधा रानी नीचे खड़ी थी। श्रीमती राधा रानी को उस पेड़ की डाली से कुछ फूल या फल चाहिए था। बहुत प्रयास किया परंतु हाथ नहीं पहुंच रहा था, तो राधा रानी ने कृष्ण को कहा कि कृष्ण जरा उस डाली को झुकाओ, मुझे वो फूल या फल तोड़ना है। तो कृष्ण ने अपना पांव से उस डाली को नीचे झुकाया, डाली नीचे हुई। श्रीमती राधा रानी ने एक हाथ से डाली को पकड़ा, दूसरे हाथ से जैसे ही फूल तोड़ने गई, भगवान कृष्ण ने अपना पांव ले लिया, राधा रानी ऊपर आ गई। हंसी आई सबको, रूप गोस्वामी को भी आ गई। इस प्रकार से लीला मन में चलती थी परंतु बाहर यह प्रकट हो जाता था। तो कुछ कुछ भक्त ऐसे होते हैं जो मानसी चिंतन जो परम चरम भक्ति की सीमा में पहुंच जाते हैं। भक्ति श्रवण सिंधु में और एक घटना है। एक भक्त एक पेड़ के नीचे बैठकर मानसी सेवा कर रहे थे, भगवान को बहुत सुंदर भोग लगा रहे थे, भगवान के लिए बहुत सुंदर भोजन बनाए, और भोजन बनाकर अब मानसी सेवा करनी है तो उसपे कौन सा खर्च होता है, उसमें कंजूसी नहीं करनी चाहिए। मन से जो भक्ति करते हैं उसमें तो अच्छे अच्छे रसगुल्ला गुलाब जामुन पनीर वाला सब्जी, ये सत्य है। कलयुग में कलयुग का एक गुण है, कलयुग में यदि मन से पाप करते हो तो उसका फल नहीं मिलता है, तो वो पाप नहीं माना जाता है। परंतु यदि कलयुग में मन से पुण्य करते हो या मन से भक्ति करते हो तो उसका फल पूरा पूरा मिलता है। परंतु दुर्भाग्यशाली कलयुग के जीव कम से कम मन में भी अच्छा नहीं सोच सकते हैं। कलयुग में यदि मन से आप 100 गाय दान में दे दो तो उसका पूरा फल मिलता है, परंतु कोई मन से भी दान नहीं कर सकता है, साक्षात दान करने की बात तो दूर रही। तो ये भक्त बैठे थे और बहुत सुंदर भोजन भगवान के लिए बनाए और बहुत सुंदर खीर बनाए। भगवान को जब भोजन भोग लगाया जाता है तो देखना होता है कि ये गरम तो नहीं है, नहीं तो हमारे ठाकुर जी को यह गरम जल जाएगा। तो वह भक्त मन ही मन में यह स्मरण करते हुए थाली बनाई, सब्जी पूरी रोटी सब रखा, खीर भी रखी, परंतु संशय हुआ कि ये खीर गरम तो नहीं है। यह देखने के लिए उन्होंने अपनी उंगली को खीर में डाला तो वह खीर बहुत गर्म थी। ये सब मन में चल रहा था, परंतु जैसे ही मन में वह खीर गरम लगी बाहर 5 लोगों ने देखा कि उनकी उंगली वास्तव में जल गई। मन में चल रहा था, वे वास्तव में बाहर प्रकट हो गया। ठीक उसी प्रकार प्रहलाद महाराज स्मरण भक्ति के आचार्य हैं, स्मरण कर रहे थे भगवान की लीला, अंदर से स्मरण होती थी, इसलिए क्वचित रुदती कभी कभी रोते थे, क्वचित हंसती क्वचित उद्गायती क्वचित और कभी कभी गाते थे। आगे कहते हैं नदति क्वचित उत्कंठो विलज्जो नृत्यति क्वचित क्वचित भावना युक्त तन्मयो नु चकार। कहते हैं कभी कभी प्रहलाद महाराज बहुत सुंदर नृत्य करके नाचने लगते थे और कभी कभी भगवान की जैसी भावना करके भगवान की तरह लीला करने लगते थे। क्वचित क्वचित उत्पू क्वचित उत्पूल कस्तुष्णिम आस्ते संस्पर्श निवृत अस्पंद प्रणयान नंद सलिल मिलिते क्षण। कभी कभी प्रहलाद महाराज एकदम चुप हो जाते थे, एकदम शांत बैठकर उनकी आंखों से अजस अविरत अश्रुधारा निकलने लगती थी, उनकी आंखें भर जाती थी। और कभी कभी प्रहलाद महाराज हंसने लगते, गाने लगते, बोलते, इस प्रकार से प्रहलाद महाराज का आचरण हो रहा था। कभी कभार हमारे मन में प्रश्न उठता है कि हमारी ऐसी स्थिति कब आएगी। भक्ति तो कई साल से कर रहे हैं परंतु प्रहलाद महाराज जैसे हम कब बनेंगे। जब ऐसा प्रश्न उठता है तो अगले श्लोक में इसका उत्तर नारद मुनि दे रहे हैं कि प्रहलाद महाराज जैसी स्थिति स उत्तम श्लोक पदार विंदयो निर्वेश या अकिंचन संग लब्ध्या। कहते हैं कि यदि प्रहलाद महाराज जैसी स्थिति प्राप्त करनी है तो उत्तम श्लोक भगवान के चरणार विंद की, भगवान के चरण शरण की शरण ग्रहण करने वाले अकिंचन शुद्ध भक्त का संग करने से प्रहलाद महाराज जैसी स्थिति हमारे जीवन में आ सकती है, अन्यथा नहीं आ सकती। प्रहलाद महाराज जैसा भक्त बनना है तो शुद्ध भक्त का संग करना चाहिए। ये संगति बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मुख्य है। भक्ति राज्य में सबसे पहला स्टेप, सबसे पहला पहलू है साधु संग। इसलिए रूप गोस्वामी कहते हैं आदो श्रद्धा, कहते हैं सबसे पहले साधु संग होना चाहिए, भक्तों का संग होना चाहिए। और जैसे ही भक्त का संग हुआ फिर भजन क्रिया इत्यादि आगे चलकर भक्ति बढ़ सकती है। और एक नहीं समस्त शास्त्र में कहा गया है कि साधु संग साधु संग साधु संग सर्व शास्त्र कई लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हो। थोड़ा भी यदि कोई शुद्ध भक्तों का संग कर लेता है तो वे बहुत उच्च स्थिति को प्राप्त कर लेता है। परंतु कैसे भक्तों का, शुद्ध भक्तों का संग। भक्त भी बहुत सारे होते हैं, परंतु रूप गोस्वामी बहुत सुंदर कहते हैं कि किस भक्तों के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए। कहते हैं कृष्णेत यस्य गिरितो मनसाद्रियेत दीक्षात चेस प्रणति भीष्ट भजंत मीशम। जो केवल साधारण भक्त है, केवल अपने मुख से कृष्ण कृष्ण बोलते हैं, उसे मन से प्रणाम करो। जिसने दीक्षा ग्रहण की है उसे दंडवत प्रणाम करो। परंतु शुश्रूषया भजन विज्ञ मनन्य मन्य निंदादि शून्य हृदयम इप्सित संग लब्ध्या। परंतु जो कभी भी अपने जीवन में किसी की निंदा नहीं किए हैं, जो भक्ति के तत्वों को भजन के तत्वों को जानते हैं, भजन विज्ञ मनन्य मन्य, ऐसे शुद्ध भक्तों का संग करने से हम भी ऐसी स्थिति पर उठ सकते हैं। और भक्तों, ऐसे शुद्ध भक्त एकमात्र ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी हैं, और उनकी कृपा से उनके शास्त्र को पढ़ पढ़कर हम यहाँ पर इसका प्रचार करते हैं। वास्तव में प्रभुपाद जी के ग्रंथ और उनकी वाणी को सुनने वाला भी प्रहलाद महाराज की स्थिति पर पहुंच सकता है। हरे कृष्णा नारद मुनि कहते हैं तस्मिन महाभागवते महाभागे महात्मनि हिरण्यकशिपुराजन अदधम आत्मजे। कहते हैं हे राजन, तस्मिन महाभागवते महाभागे, कहते हैं कि उस महान भगवत भक्त महाभाग्यशाली महात्मा प्रहलाद महाराज के प्रति अघम हिरण्यकश्यपु ने बहुत बड़ा पापाचार किया, बहुत द्रोह किया। इस श्लोक में महाभागे शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। प्रहलाद महाराज को महाभाग कहा गया है, और महाभाग का अर्थ होता है महाभाग्यवान। देखिए शब्द के ऊपर ध्यान दीजिए, प्रहलाद महाराज को महाभाग कहा गया है और महाभाग का अर्थ होता है महाभाग्यशाली। तो महाभाग्यशाली हम बाद में समझेंगे, पहले भाग्यशाली किसे कहा जाता है। इस संसार में अनंत अनंत जीव है, एते ब्रह्मांड भरी अनंत जीवगण 84 लक्षते जीव कर ये भ्रमण। इस ब्रह्मांड में अनंत जीव है, परंतु उसमें भाग्यशाली कौन है? चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को कहते हैं कि ब्रह्मांड भ्रमिते, इस संसार इस ब्रह्मांड में हजारों हजारों अनंत जीव भ्रमण करते करते कौन भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद पाई भक्ति लता। इस ब्रह्मांड में घूमते घूमते यदि किसी व्यक्ति को गुरु का सानिध्य मिल जाए, गुरु और कृष्ण की कृपा से भक्ति मिल जाए, वे भाग्यशाली जीव है। जो महलों में रहता है वो भाग्यशाली नहीं है, जिसके पास गाड़ी बंगला है वो भाग्यशाली नहीं है। वास्तव में भाग्यशाली वो है जिसके पास भक्ति है, भगवान का यह कहना है। क्योंकि भक्ति सुदुर्लभ, भक्ति बहुत मुश्किल है। आप करोड़पति बन सकते हो, अरबपति बन सकते हो, गाड़ी बंगला ले सकते हो, परंतु भक्ति सबको नहीं मिलती, सुदुर्लभा। तो भाग्यशाली वो है जिसे भगवान की भक्ति मिलती। तो प्रश्न होता है प्रहलाद महाराज महाभाग्यशाली क्यों है, प्रहलाद महाराज को महाभाग्यशाली क्यों कहा गया। तब जीव गोस्वामी अपनी टीका में बहुत सुंदर बात कहते हैं कि संसार में गुरु तो सबके पास होते हैं, गुरु बहुत बनाते हैं, परंतु प्रहलाद महाराज नारद मुनि के शिष्य है। प्रहलाद महाराज के गुरु नारद मुनि है, प्रहलाद महाराज के ऊपर नारद मुनि की कृपा है, इसलिए प्रहलाद महाराज महाभाग महाभाग्यशाली। नारद मुनि जैसे गुरु मिल जाना ये बहुत बड़े भाग्य की बात है, महाभाग्यशाली माना जाता है। और भक्तों, हमारे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है यदि हमें भी महाभाग्यशाली बनना है। यदि हमें भी महाभाग्यशाली बनना है तो हमारी जो संस्था है, हमारी जो परंपरा है, वह नारद मुनि की परंपरा है। भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, ब्रह्मा ने नारद, और नारद से जो ये गुरु शिष्य परंपरा चलते चलते ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के पास आई। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत में जो दीक्षा लेते हैं, जो शिक्षा लेते हैं, वे सब लोग महाभाग्यवान हैं, महाभाग्यशाली, प्रहलाद महाराज की तरह। महाभागे महाभाग्यवान। तो इस प्रकार से अंत में युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि प्रहलाद महाराज में इतने सारे गुण थे और ऐसे प्रहलाद के ऊपर हिरण्याकश्यपु राजन अकरोत अदम आत्मजे, हिरण्याकश्यपु ने बहुत बड़ा अत्याचार किया, पाप किया। तब युधिष्ठिर महाराज को बहुत बड़ा प्रश्न हुआ। युधिष्ठिर महाराज का भाव यह था कि इतना इतना गुण होने के बाद भी जो अपने पिता के चरणों में प्रणाम करते थे, इतना सुंदर गुण था, फिर भी हिरण्याकश्यपु ने इसे क्यों मारने का प्रयास किया। तो इस श्लोक के तात्पर्य में श्रीपाद श्रीधर स्वामी कहते हैं कि प्रथम अध्याय अंते पृष्ठम एव अर्थम इति विस्मयन पुनः पृच्छति। युधिष्ठिर महाराज जो प्रश्न पूछ रहे हैं, देवर्ष एतद इच्छामो वेदितुम तव सुव्रत इदात्मजाय शुद्धाय पिता दास साधवे यगम। युधिष्ठिर महाराज ने प्रश्न पूछा कि हे नारद मुनि, हे देवर्षि, हे सुव्रत, कृपया करके आप मुझे बताइए कि इतने सुंदर गुणवान प्रहलाद महाराज के ऊपर हिरण्याकश्यपु ने द्रोह क्यों किया। यही प्रश्न श्रीपाद सिद्ध स्वामी कहते हैं प्रथम अध्याय अंते, सप्तम स्कंद के प्रथम अध्याय के अंत में युधिष्ठिर महाराज पूछ चुके थे, लेकिन फिर भी चौथे अध्याय के अंत में वही प्रश्न रिपीट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि युधिष्ठिर महाराज प्रहलाद महाराज के गुण में इतने रम गए थे कि वे भूल गए कि मैंने भी ये प्रश्न पहले पूछा था। युधिष्ठिर महाराज हमारी तरह नहीं सुनते थे, कान यहां पर है और मन घर पर है, मेरे हमारे बच्चे क्या कर रहे होंगे। किसी का कान और दृष्टि यहां पर है परंतु मन प्रसाद में है, कब ये प्रभु बन करे और भोजन करे, टाइम कभी का हो चुका है। युधिष्ठिर महाराज ध्यान से सुन रहे, इसलिए वही प्रश्न को फिर से यहां पर रिपीट किए। कैसा प्रश्न है? नारद मुनि को कह सबसे पहले कहते हैं कि हे देवर्षि, नारद मुनि को देवर्षि संबोधन दे रहे हैं। देवर्षि का अर्थ वंशीधर जी कहते हैं देवा अपि सर्वज्ञा भवन्ति। देवर्षि का अर्थ होता है सर्वज्ञ। नारद मुनि को युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि हे सर्वज्ञ, आप तो सब कुछ जानते हो, इसलिए आप मेरे प्रश्न का उत्तर देने में समर्थ हो। और दूसरा संबोधन देते हैं सुव्रत, हे सुव्रत। सुव्रत का अर्थ होता है काम क्रोध आदि परित्यागेन केवलम परोपकारम रूपम व्रतम ददासित इति भाव। जो काम क्रोध और लोभ को त्याग कर एकमात्र परोपकार करने के लिए अपना जीवन लगा चुका है उसे सुव्रत कहा जाता है। केवल दूसरों के ऊपर उपकार करने का व्रत लिया है उसे सुव्रत कहते हैं। और नारद मुनि के जीवन में देखा गया है काम क्रोध लोभ को त्याग कर केवल दूसरों का उपकार करने के लिए अपना जीवन लगा देते हैं। ध्रुव के ऊपर कृपा की, उसने भगवान प्राप्त कर लिए। प्रहलाद के ऊपर की, वे भी भगवान को प्राप्त हुए। चित्रकेतु महाराज के ऊपर कृपा की, ऐसा नहीं अच्छे से लोग के ऊपर, बुरे से बुरे लोग के ऊपर भी कृपा करते हैं। कुबेर जी के दो पुत्र थे नल कुबेर मणिग्रीव, उनके ऊपर भी नारद जी ने कृपा की, नंद बाबा के वहां वृक्ष बना दिया, उनका उद्धार करा दिया। केवल परोपकार के लिए अपना जीवन बिता है। वास्तव में साधु का यही स्वभाव होता है। साधु संत अपने लिए नहीं सोचते हैं, साधु संत दूसरों के लिए सोचते हैं, दूसरों का उद्धार कैसे हो। तो कहते हैं हे देवर्षि, हे सुव्रत, आपका तो जीवन परोपकार करने के लिए है, कृपया करके मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। क्या प्रश्न था? प्रश्न पूछ रहे हैं यदात्म जाय शुद्धाय। हे प्रभु, हे नारद जी, आप जिस प्रहलाद की बात किए वे तो परम शुद्ध था। शुद्ध का अर्थ आचार्य गण कहते हैं निर अपराधाय। प्रहलाद ने कभी भी अपने जीवन में पाप तो किया ही नहीं था, अपराध भी नहीं किया था, शुद्ध था और साधु था, साधु स्वभाव वाला था, साधवे यगम। और इतना ही नहीं, आत्मजाय, वो सब तो छोड़ो, साधु है, शुद्ध है, पुत्र था, हिरण्याकश्यपु का पुत्र था, फिर भी उसे मारने का प्रयास क्यों किया। इस संसार में देखा गया है एक पिता पुत्र कैसा भी हो उसे जान से मारना नहीं चाहता है। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर लिखते हैं कि पिताजी अपने पुत्र को डांटते हैं, उसको सुधारने के लिए फटकारते हैं, परंतु जान से मारने की कोशिश नहीं करते हैं। यहां पर हिरण्याकश्यपु प्रहलाद महाराज को जान से मारने की कोशिश किए, तो पूछ रहे कि अपने पुत्र को जान से मारने की कोशिश क्यों की। इस संसार में हम देखते हैं कि पिता अपने पुत्र को बहुत प्रेम करते हैं। एक पिता अपने छोटे से बालक को अपने गोद में लिया है और बालक यदि पिता के ऊपर सुसु भी कर दे, पेशाब भी कर दे, तब भी उस अपने पिता को घृणा नहीं होती है। यही सोचते हैं कि नहीं, बालक है। हमारे गुरु महाराज तो कहते हैं कि उस पिता को ऐसा लगता है जैसे गंगा का प्रवाह किसी ने छिड़क दिया। इतना आनंद का अनुभव करता है। और वही पिता यदि बिल्डिंग में नीचे गया है और दूसरे का बालक सुसु कर रहा है तो कहे भगाओ भगाओ यहां से। क्यों भाई, क्या हुआ? दोनों लड़के हैं, वो लड़का आपके ऊपर पेशाब कर रहा है तो कोई तकलीफ नहीं, और दूसरे का लड़का रास्ते में कर रहा है तो आपको तकलीफ हो गई। क्यों? क्योंकि वो हमारा नहीं है। हमारे अपने बच्चों के ऊपर बहुत प्रेम होता है। तो ये अपना बच्चा था, हिरण्याकश्यपु का अपना पुत्र था, फिर भी आत्मजाय यगम अपने पुत्र पर पाप किया, अत्याचार किया। पुत्रान विप्रतिकूलान स्वान पितर पुत्र वत्सला उपालभन्ते शिक्षार्थम नेवा अधम परो यथा। प्रतिकूल आचरण करने वाले पुत्र के ऊपर, वही बात कर रहे हैं कि प्रतिकूल आचरण करने वाले के ऊपर पिता शिक्षा देते हैं परंतु जान से मारने का प्रयास नहीं करते हैं। किमु तानु वशान साधुं तादृशान गुरु देवतान एतत् कौतूहलं ब्रह्मन् अस्माकं विदमः प्रभो पितु पित्राय यद्वेषो मरणाय प्रयोजितः। कहते हैं कि जो पुत्र अपने पिता के वश में रहते हैं ऐसे साधु पुत्र के ऊपर गुरुजनों और देवता सदैव प्रेम करते हैं। जो पुत्र वश में होता है उसके ऊपर पिता, गुरुजन, बड़े लोग सदैव प्रेम करते हैं, परंतु इस हिरण्याकश्यपु ने द्वेष क्यों किया? ये युधिष्ठिर महाराज का प्रश्न था। आप हमें यह उत्तर दो कि हिरण्याकश्यपु ने अपने पुत्र पर द्रोह क्यों किया? तो इस प्रकार इति श्रीमद् भागवते महापुराणे परमहंसायाम संहितायाम पंचम स्कंद यहाँ पर, चतुर्थ स्कंद यहाँ पर समाप्त होता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। तो युधिष्ठिर कथा यहाँ पर रुकी है। अब प्रहलाद महाराज के गुणों का, चरित्र का वर्णन हो गया। अब प्रश्न यह पूछा कि प्रहलाद महाराज के ऊपर द्रोह क्यों किया। अब यह कथा हिरण्याकश्यपु के घर पर आएगी। प्रहलाद महाराज हिरण्याकश्यपु के बीच में वार्तालाप, प्रहलाद महाराज को मारने के बहुत बहुत प्रयास, परंतु भगवान के द्वारा उनकी रक्षा होगी और अंत में भगवान नरसिंह देव का आविर्भाव होगा, प्राकट्य होगा और हिरण्याकश्यपु का वध होगा। सब लोग बैठे रहिए, कोई भी खड़े नहीं होंगे। तो इस प्रकार से कथा आगे आएगी। इस कथा को सुनिए, अपने जीवन को पवित्र बनाइए, अपने जीवन का उद्धार कीजिए। हरे कृष्णा। हमारी इच्छा है कि गुड़ाकेश प्रभु आज चले जाने वाले हैं, इसलिए अंत में भी दो शब्द के द्वारा हम सबको संबोधन करें।
तो इस प्रकार श्रीमद् भागवतम भगवान और उनके महान भक्तों की गाथा है और इन गाथा को जब हम श्रवण करते हैं तो उन श्रवण के साथ ही हमारे हृदय में जितना भी दोष है उन दोषों से वो हृदय मुक्त हो जाता है। श्री कुंती महारानी कहती है कि सुनवंती गायंती गुणंती अभिक्षणा। जो व्यक्ति निरंतर इस प्रकार के भगवान के गुणों का और उनके भक्तों के गुणों का गुणगान जब अपने कानों से सुनते हैं, उनको गाते हैं, तब कहते हैं कि भव प्रवाहो उपरमम पदाम्भुजम। तो इस भव रूपी जो ये प्रवाह है वो प्रवाह से व्यक्ति ऊपर उठता है। भव प्रवाह कहते हैं जो हमारा ये जन्म चलता है उनको भव बोलते हैं। जैसे हम कहते हैं इस भव में, उस भव में, भव का अर्थ जन्म होता है। तो हम जो जीवित है तब हमारा भव चालू है, उनके बाद हमारा मृत्यु हो जाता है। तो इन भव प्रवाह चालू है, प्रवाह का ये अथाह प्रवाह है, इनकी कोई था नहीं है। ये कितना जन्म आगे लेना पड़ेगा इनको हम गिन नहीं सकते। अनगिनत जन्म हम लोग पीछे ले चुके और ले करके मर चुके और फिर पुनः जन्म लिया, कितना बोले अनगिनत। इसलिए उनको कहते भव प्रवाह, इन अथाह, इन भव में व्यक्ति कहते ऊपर उठ जाता है। उन भव प्रवाह से व्यक्ति अपने आप को ऊपर उठा लेता है, इन भगवान के और भगवान के भक्तों के और भगवान के गुणानुवाद सुन करके उनको गा करके जब वो भव प्रवाह से ऊपर उठ जाता है, उसका अर्थ यह है कि भगवान की दृष्टि उस जीव के ऊपर पड़ जाती है कि मेरी कथाओं का, मेरे भक्तों की कथा का वो गायन करता है या श्रवण करता है, तो इस प्रकार वो भगवान के प्रिय हो जाते हैं। और याद रहे कि जिस समय व्यक्ति भगवान को प्रिय होता है तो उसी समय व्यक्ति का संसार का क्षय सुनिश्चित हो जाता है। अर्थात ये जो हमारा संसार है वो संसार कहां किस प्रकार छूट जाएगा ये भी पता नहीं चलता है। बड़े बड़े तपस्वी ज्ञानी और बड़े बड़े योगी लोग इस संसार को छोड़ने के लिए अनेक प्रकार से प्रयत्नशील है। ये कहिए कि अनेक अनेक जन्मों पर्यंत वो लोग अपनी साधना में रत होते हुए भी इस संसार आसक्ति को नहीं छोड़ पाते हैं और हमेशा रोते रहते हैं इन संसार आसक्ति को छोड़ने के लिए। क्यों जानते हैं? क्योंकि यही भवसागर में डुबाने वाली है और ये जो संसार आसक्ति है वही हमें पुनर्जन्म में बार बार संसार को देने वाली होती है, या बार बार ये देह हमें लेने के लिए बाध्य करती है संसार आसक्ति। इसलिए हमारा गुजराती कवि लोग गाय छे ईसु क्या छे के मारी ममता मरे नहीं आनु मारे शुं करूं। सुकाम मारवी छे ममता ने, क्यों मारना है ममता को? बोलते कि मेरी ममता नहीं मरती है, मुझ में इसका क्या करूं, किस प्रकार उनको मारूं। वस्तु तो जो भगवान के गुणों को नहीं जानते हैं वो ममता को मारना चाहते हैं, उन ममत्व को जो एकमात्र जीव की पूंजी है, याद रहे उस ममता को मारना नहीं है। लेकिन जो लोग ये नहीं जानते हैं कि ममता को भगवान में ट्रांसफर करना है वो लोग मारना चाहते हैं, क्योंकि ये ममता दुखदाई है। अच्छा उनको पूछिए कि ममता क्यों मारना चाहते आप? क्यों? क्योंकि ये ममता के कारण ही उनको जन्म लेना पड़ता है। वो ममता जन्म और मरण का कारण और पुनरपि ये संसार का कारण और अनेक दुखों का कारण। याद रहे दुख हमको जो देह मिलता है उनके साथ दुख ही मिला है। ये देह नहीं, ये देह क्या? ये देह के रूप में दुख है, दंड है। ये प्रकृति जिनको दंडित करती है उनको देह देती है। इसीलिए साधु लोग गाते हैं कि हमारी ममता मरे नहीं आनु मारे सुकर सुकाम मारवी छे। तो कहते हैं आने मारवी सारी, कारण कि आने छे ने केटला बधा रूप मने अपाया छे। ई कहे छे के राजा के रूप धरी में तो जोज लीधू अने भर्या में सघला भंडार पण आटला धने मन मारू नव मान्यू अन पछी लूटवा हालो हूं तो सगलो संसार आ मारी ममता मरे नहीं आनु मारे शू। आ दुख देवा वाली जी भाई, आने जेटले तमे खेची लो संसार ना पदार्थो तोय आ छे ने कोई दी सुखी करवानी नथी। इतले आ ममता ने मारवानू कहे छे પણ જે લોકોને જ્ઞાન થઈ ગયું છે કે આ મમતા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણમાં ટ્રાન્સફર કરવાની છે અથવા એને ભગવાનમાં લગાવવાથી એ સમસ્ત સંસારનો જે વૈરાગ્ય છે એની મેળે વ્યક્તિના હૃદયમાં ઉત્પન્ન થાય છે. શ્રીમદ ભાગવતમમાં પ્રથમ સ્કંદમાં સુત ગોસ્વામી પાદ આ ભાગવતમનું કેટલું સુંદર છે એનું વર્ણન કરતા અથવા ભગવાનની ભક્તિ કેટલી સુંદર છે એનું વર્ણન કરતા એ કહે છે કે તે વાસુદેવે ભગવતી ભક્તિઓ પ્રયોજિત જનયતી આસુ વૈરાગ્યમ જ્ઞાનમ ચ યદ અહિકતમ. ભગવાન વાસુદેવમાં વ્યક્તિની ભક્તિ જેવી ઉત્પન્ન થાય તો કે જનયતી આસુ, આસુ નામ શીઘ્ર, શીઘ્ર વ્યક્તિના હૃદયમાં બે વસ્તુની ઉત્પત્તિ, જનયતી જનન માને જનયતી માને જનન ઉત્પન્ન થવું, ઉત્પન્ન હોતા હૈ ક્યા જ્ઞાન ઓર વૈરાગ્ય. લાલ ગોવિંદ પ્રભુ કી ભાષા મેં ભક્તો જબ જિસ દિન આપ ભગવાન કી ભક્તિ ગ્રહણ કરેંગે ઉસ દિન સે સંસાર સે વૈરાગ્ય આયેગા. અગર નહીં આયા તો હમારી ભક્તિ ઠીક હો નહીં રહી હૈ, કુછ ના કુછ ઉસમેં તકલીફ હૈ. ચૂંકિ દો ઉત્પન્ન હોના હૈ, જનયતિ આસુ જ્ઞાનમ વૈરાગ્યમ ચ. જ્ઞાન કે હું આ દેહ નથી, મેં યે દેહ નહીં હું, લેકિન ઉનકે સાથ મેં કૃષ્ણ કા દાસ હું, ઉનકો જ્ઞાન બોલતે. મેં દેહ નહીં, મેં આત્મા હું કેવલ, ઓર વો આત્મા એક દિન ભગવાન બન જાયેગા, ઉનકો જ્ઞાન નહીં બોલા જાતા હૈ. શ્રી શ્રી ભક્તિ વેદાંત સ્વામી અપને સારે પુસ્તક મેં ઇસી બાત કો બાર બાર રિપીટ ઇસલિયે કર રહે હૈ ક્યોંકિ ભારત વર્ષ મેં એ સબસે બડા બીમારી હૈ કે વો લોગ દુઃખ કા અંત ચાહતે હૈ લેકિન સુખ કે સામને દેખના નહીં ચાહતે હૈ. ભગવાન કે સામને સુખરૂપ ભગવાન કો છોડ કરકે વો સુખી હોના ચાહતે હૈ કેવલ આત્મજ્ઞાન કે બલ પર. વસ્તુ સ્થિતિ યહી હૈ કે અગર કેવલ કોઈ વ્યક્તિ દુઃખ નિવૃત્તિ ચાહતા તો હો નહીં સકતા હૈ, ચાહે વો મુક્ત હો જાય લેકિન મુક્તિ સે ઉનકો સુખ નહીં મિલેગા. સુખ જબ તક પરમ પુરુષ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કા સાનિધ્ય ઉનકી ભક્તિ જીવ નહીં કરતા હૈ તબ તક વો સુખી નહીં હોતા હૈ. ઇસલિયે મેને કહા કે કભી કભી સાધુ સંત યે ગાયા કરતે હૈ કે વો અપની મમતા કો મારના ચાહતે હૈ લેકિન મમતા કો ટ્રાન્સફર કરના નહીં ચાહતે હૈ. જો ભગવાન વાસુદેવ મેં જિનકી મમતા ટ્રાન્સફર હુઈ હૈ એસે પ્રહલાદ મહારાજ કી સ્થિતિ આપ લોગને દેખ લિયા. ક્વચિત હસતી, ક્વચિત ગાયતી, રુદતી ક્વચિત. કભી વો ગા રહે થે, કભી હસત. ક્યું? ભગવાન કે લિયે. આપ દેખિયે જિસ સંસાર મેં સબસે પ્રિય વસ્તુ જગત મેં કોઈ હોય કિસી વ્યક્તિ કે પાસ તો કેવલ અપના આત્મા હૈ. ઓર ઇતના સ્ફુલિંગ જો કેસ કે અગ્ર ભાગ કે 10,000વે હિસ્સે ઉન જીવ જબ ઇતના આનંદિત સુખ ઉત્પન્ન કરતા હૈ તો ઉન પરમાનંદ ઘન ભગવાન મેં કિતના સુખ હોગા ઉનકી હમ કલ્પના તક નહીં કર સકતે. ચૂંકિ હમ ભક્તિ નહીં કરતે હૈ ઇસલિયે ભક્તિ કે દ્વારા મિલને વાલા સુખ ઉપલબ્ધ નહીં હોતા હૈ. લેકિન ધન્ય હૈ ઉન પ્રહલાદ મહારાજ, ઓર ધન્ય હૈ શિલ પ્રભુપાદ મહારાજ, ઓર ધન્ય હૈ નરસિંહ મહેતા કે જિન્હોને ઇસલિયે ઇન ભક્તિ કા ગુણગાન ગાયા હૈ. કે ભૂતલ ભક્તિ પદારથ મોટું, આ તો ભૂતલ ભક્તિ પદારથ મોટું, અજ તન લોકમાં નાહી રે, ભૂતલ ભક્તિ પદારથ મોટું, ભૂતલ ભક્તિ પદારથ મોટું, અજ તન લોકમાં નાહી રે, ભૂતલ ભક્તિ પદારથ મોટું. નરસિંહ મહેતા કહે છે કે પુન કરી અમરાપુર પામ્યા, તો પુન કરી અમરાપુર ઘણા પામ્યા, પણ અંતે 84 ની માઈ રે, ભૂતલ ભક્તિ પદારથ મોટું. નરસિંહ મહેતા કહે છે ભાઈ કે ઘણા બધા પુણ્ય કરી અને સ્વર્ગ લોક ગયા, પણ સ્વર્ગ जा करके भी वो वापस आए कहां पर, क्षीण पुण्य मृत्यु लोकम विशंति शास्त्र कहते हैं कि पुण्य क्षीण होने से इस धराताल पर पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन जो व्यक्ति भगवान का भक्त है उनको कभी भी दोबारा इस पुनर्जन्म का मुख नहीं देखना पड़ता, कभी नहीं। इसलिए ममता को मारना नहीं, ममता को भगवान में ट्रांसफर करने से हम लोग धन्य हो जाएंगे। इसलिए इन भागवती कथा को सुनते हुए, उनको गाते हुए और भगवान के नाम को जीवन में अपनाते हुए आप जीवन यापन कीजिए। आपका जीवन उन महान योगियों से जो संसार छोड़ करके और जंगल में भटकते उनसे भी महान हो जाएगा। और केवल नाम ग्रहण करने से भगवान का हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण।